वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। डिड नॉट रिकॉर्ड आई थिंक एक्चुअली इट स्टॉप्ड
यू
शुड टेक दिस प्रीवियसली आल्सो व्हाटएवर
यस
ओम ज्ञान चिन्मयस्य गणञ्जयाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतलये। स्वयं रूपकदामिन्यं ददाति स्वपदाम्बिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपतिगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सर्वजातं सर्वधर्मान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजन सवितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सर्वनवनीता श्री विशाखान्वितांश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि सगुण का उपासना श्रेष्ठ है या निर्गुण का उपासना श्रेष्ठ है। तो इसके उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा दिए कि सगुण का उपासना करना श्रेष्ठ है। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो भी ठीक है, अंत में वो भी आते हैं, मेरे पास ही आते हैं। निर्गुण का जो उपासना करते हैं वो लोग भी मेरे पास ही आते हैं। फिर उसके बाद अभी निर्गुण उपासना में क्या समस्या है उसको पंचम श्लोक में कहते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि वृत्तिर्दुःखं देहभक्तिरव्याप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव ही दुष्कर होता है। क्लेशो अधिकतरस तेषाम अधिकतर अधिक बहुत ही ज़्यादा क्लेश होगा उसका, ऐसे कह रहे हैं। क्लेशो अधिकतरस तेज और उसके बाद में गतिर दुःखम ऐसे कह रहे हैं, उसका हम लोग चर्चा करेंगे गतिर दुःखम का बाद में। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इन दोनों मार्गों में क्या अंतर है, इसके बारे में वर्णन हो रहा है। विशेष करके इस श्लोक में तो कैसे जो निर्गुण उपासना ठीक नहीं है या वो बहुत ही मुश्किल है, वो बहुत सारे क्लेश होते हैं और अंत भी क्या हो जाता है, दुखमय हो जाता है, ऐसे वर्णन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इन दोनों मार्गों में क्या अंतर है उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहला चीज है कि इस मार्ग जो है, जो निर्गुण उपासन का मार्ग है, वो बहुत ज़्यादा ही क्लेशदायक है, लेकिन जो भक्ति योग है तो इन निर्गुण उपासनकों को पहले प्रभुपाद बोलते हैं कि वो ज्ञान योगी है और जो सगुण उपासक है वो लोग भक्ति योगी है। सो ज्ञान योगी का पथ बहुत ही कष्टदायक होता है, कष्टकारक होता है, हालांकि उनका भी लक्ष्य है भगवान कृष्ण ही, लेकिन बहुत कष्टदायक होता है। और भक्ति योग क्या है, बहुत ही सरल और स्वाभाविक है, ऐसे प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। क्यों ये सरल और स्वाभाविक है और क्यों जो ज्ञान योग है वो कष्टदायक है। पहला चीज उसके लिए वो वर्णन करते हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर है, वो उसमें दो चीज है। एक है वो सब निर्गुण उपासना या ज्ञान योग कष्टकारक है, लेकिन भक्ति योग बहुत ही सरल है और आसान है। और दूसरा चीज को भगवान बोलते हैं ज्ञान योग बहुत ही दुखमय, उसका अंत क्या है, दुखमय हो जाता है, और भक्ति योग का अंत है वो आनंदमय। तो ये दो अंतर है। और पहला क्यों है ऐसे, वो पहले वाला कष्टकारक क्यों है उसका वर्णन करते हैं। तो कष्टकारक इसलिए है क्योंकि सिर्फ ऐसे थियोरेटिकली ये मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ वो समझ पाना आसान नहीं है। तो वो एक यहाँ पर, लेकिन वो भक्ति योग में हम लोग क्या करते हैं, जो लोग देहात्म बुद्धि में है उनको भक्ति योग में क्या किया जाता है, उनको विग्रह सेवा करने के लिए लगाया जाता है। विग्रह सेवा तो करने के लिए जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे ना, गृहस्थ भक्तों को ज्यादा विग्रह सेवा करना चाहिए ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से मुक्त होना मुश्किल हो जाता है। या दूसरे शब्दों में भक्ति योग में विग्रह सेवा में लगने के कारण वो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाना आसान हो जाता है। वो अंतर है, लेकिन वो निर्गुण उपासना में नहीं रहता या ज्ञान योग में नहीं रहता है, तो इसलिए वो कष्टकारक है। और दूसरा चीज क्यों वो कष्टकारक है, हाँ इससे जाने से पहले अभी थोड़ा श्रील प्रभुपाद ये मूर्त तथाकथित जो अर्च विग्रह की सेवा के बारे में बोलते, तथाकथित जो मूर्ति पूजा कहते हैं लोग उसको, तो अर्च विग्रह सेवा के बारे में बोलते हैं। तो अर्च विग्रह का सेवा क्या है, वो अधिकृत है। उसका क्यों जरूरत है, एक चीज है कि हम लोग देहात्म बुद्धि से आसानी से मुक्त हो जाते हैं, वो इसका जरूरत है। और इसके पहले ही हम लोग 11वें अध्याय के अंतिम दो श्लोकों में भी वहां पर भी क्या आता है, ये विग्रह सेवा के बारे में आप तात्पर्य में हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, तो 54वें श्लोक में, 54 ना 54 54 श्लोक में वो प्रभुपाद तात्पर्य में इज्ज, उसके पहले के श्लोक में इज्ज शब्द आता है, वो भक्ति में कैसे करना चाहिए। वो बोलते हैं अलग अलग जगह पर भारत में मंदिर है, जाके उनका सेवा आराधना कर सकते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग भगवान को समझ सकते हैं, वो एक है। और 55वां श्लोक में भगवान बोलते हैं मत कर्म कृत, मत कर्म कृण, वो कृष्ण को कैसे कर्म किया जाए, उनके मंदिर बांधा जाए, उनके लिए फल फूल अर्पण किया जाए, और उनके लिए क्या बना जाए, एक सुंदर एक बगीचा बनाया जाए, इसको मत कर्म कहते हैं, या उसका सेवा आराधना का व्यवस्था की जाए। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अर्च विग्रह सेवा का क्या जरूरत है उसका वर्णन हो रहा है। और इस ऐसे इस श्लोक में भी वो इसलिए जरूरत है क्योंकि हम लोग देहात्म बुद्धि से आसानी से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान योगी वो ना करने से उनको बहुत कष्टकर होता है। तो ये महत्व है अर्चा विग्रह सेवा करने का। ऐसे उसके पहले भी 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में जब भगवान, वो लोग मनुष्य रूप में भगवान प्रकट होते हैं तो लोग उनका उपहास करते हैं, ऐसे उस तात्पर्य में भी अंत में अर्च विग्रह का भी उपवास करते हैं ना लोग ये मूर्ति है करके। लेकिन श्रील प्रभुपाद वो कहते हैं ना, वहाँ पर लोग कहते हैं कि भगवान सब जगह है, ये अर्च विग्रह का पूजा करने का क्या जरूरत है ऐसे वो लोग, लेकिन सब जगह है, लेकिन सब जगह आप देख नहीं सकते, लेकिन भगवान सब जगह है तो ये अर्च विग्रह में भी रहेगा। तो ऐसे वो अधिकृत कैसे, अर्च विग्रह सेवा अधिकृत है वो सिद्ध करता है 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के तात्पर्य में जो वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद उसको बता रहे, समझा रहे कि कैसे अर्च विग्रह का सेवा एक अधिकृत मार्ग है जो वेदों में बताया गया है। तो सगुण उपासना है और निर्गुण उपासना है जो जिसका यहाँ पर चर्चा हो रहा है। तो सगुण उपासना मतलब अर्च विग्रह का सेवा होता है उसमें, तो इसलिए वो और अर्च विग्रह को, क्योंकि भगवान सर्व अंतर्यामी है और सर्वशक्तिशाली है, वो पत्थर में या ऐसे चित्र में भी भगवान उपस्थित हो सकते हैं और भक्तों का सेवा स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर क्या उदाहरण दे रहे, वो उदाहरण दे रहे कि जब हम लोग अपना जो खत है वो ऐसे पोस्ट, इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक के द्वारा, भारतीय भारत सरकार जो डाक का विभाग है उसके द्वारा जो अधिकृत डिब्बा होता है लाल डिब्बा, उसमें हम लोग खत डाल देंगे तो क्या हो जाता है, वो उसके जो डेस्टिनेशन है गति वो पहुंच जाता है। तो वैसे ही भगवान का अधिकृत रूप का हम लोग आराधना सेवा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भगवान उसमें स्वीकार करेंगे या हमारा सेवा भगवान तक पहुंच जाएगा। तो अधिकृत मतलब वेदों में दिए गए उसके अनुसार विग्रह का स्थापना करके उनका सेवा करने से भगवान वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं भक्तों की, शुद्ध भक्तों की बुलाने के कारण, इसके कारण वो स्वीकार करते हैं, ऐसे ही अधिकृत है। तो 1900 सदी में और 20वीं सदी के आरंभ में ऐसे बहुत सारे समाज सुधारण आंदोलन शुरू हो गए जो ईसाई धर्म के साथ या मुसलमान धर्म से, ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म के साथ मिलने के कर मिल के या उनकी कुछ उनके धर्म के जो अंशों को लेकर वो लोग क्या किए, वो लोग ऐसा प्रचार करने लगे कि मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, ऐसे जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, हाँ ऐसे बहुत सारे वो लोग प्रचार करने लगे इसके विरुद्ध। लेकिन ये अधिकृत है, वेदों में अधिकृत है, ये इसको कौन नकार सकते हैं। तो ऐसे ये अर्च विग्रह के बारे में थोड़ा यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि वो सगुण वर्ष उपासना है। तो लेकिन हमारा मुद्दा क्या था, कैसे भक्ति योग सरल है, वो हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे आसानी से भक्त देहात्म बुद्धि से मुक्त हो सकता है। तो दूसरा चीज यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ज्ञान मार्ग में एक व्यक्ति को वेदों के उपनिषदों को, वेदों को पढ़ना पड़ रहा है, विशेष करके उपनिषदों को, वो पढ़ने से पढ़ना मुश्किल है ऐसे वक्त। क्यों मुश्किल है, उसका सभी जो भाषा है पहले उसको सीखना पड़ता है, भाषा को सीख के उसके आधार पर उसको अध्ययन करके, अध्ययन करने के बाद उसके आधार पर क्या ब्रह्म है क्या नहीं है उसके आधार पर वेद करना होता है। उपनिषदों को अध्ययन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है या बुद्धि प्राप्त होता है उसके आधार पर हमें क्या ब्रह्म है क्या नहीं है उसके बीच में वेद करना होता है। तो ये तो बहुत ही कठिन तकलीफदायी है, लेकिन जो भक्त लोग हैं आसानी से भगवान के पास जा सकते हैं, ये सरलता है। और उसके बाद में ये सब अध्ययन करने के बाद भी इसका ऐसा नहीं कि गति अंत जो है वो आसानी से प्राप्त होता है, जरूरी नहीं कि हम लोग साक्षात्कार करेंगे। तो इसलिए गति दुखम, वो दूसरा हमारा विषय है कि दुख में गति होता है उनका, अंत में साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। वो दशम स्कंद में जब ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, वो कहते हैं वो श्रेया शतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल भक्त लब्धये बोध लब्धये तेषां असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यता स्थूलतवा तुषावगातिना। तो 10.14.4, हे भगवान, आपकी भक्ति में सेवा आत्म साक्षात्कार के लिए वो सर्वोच्च पथ है। उस पथ को त्याग कर जो व्यक्ति ऐसे ज्ञान मार्ग का ज्ञान का अनुशीलन करता है वो सिर्फ क्लिश्यन्ति, यहाँ पर बोलते क्लेश ही प्राप्त करेगा। क्लिश्यन्ति ये केवल बोध अलग है, ऐसे केवल सिर्फ तो क्या है, क्लेश ही होगा उसका। और अंत में क्या है, वो जो अंत में जो लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहता है वो भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसे ऐसे बोलते। तो एक उदाहरण दे रहे हो, क्या उदाहरण दे रहे, जो वो चावल का छिलका रहता है ना, जनरली पहले जमाने में कैसे निकाल, आजकल मशीन में डाल देते हैं उसको। हाँ, पहले जमाने में लोग उसको लेके आके उसको काट के लेकर आते थे और उसको मारते थे, मारने से वो जो दाना है वो बाहर रह जाता था। ये सरल विधि है, ये लोग मशीन बना के उसको सब बर्बाद कर दिया। वो मशीन बनाने के लिए कितने सारे तकलीफ लेना पड़ता है ना, उसको चलाने के लिए और ईंधन डालो, है ना। फिर ऐसे आसान चीज़ों को क्या बना दिया, मुश्किल बना। ये प्रगति है, आधुनिक प्रगति है ना। एनीवे, उस हमारा वो बात नहीं, अभी चर्चा विषय नहीं। तो हमारा चर्चा क्या है कि जब वो पैड़ी रहता है ना, उसमें दाना नहीं है तो वो आप मारते जाएंगे, क्या होगा, कुछ दाना भी नहीं आएगा और आपको बहुत तकलीफ भी होगा। तो वैसे ज्ञान मार्ग है, आपको फल भी नहीं मिलेगा लेकिन वो करते करते तकलीफ भी हो जाएगा। तो ये ज्ञान मार्ग है। तो ये श्लोक है ना, बहुत ही इसके लिए लागू होता है, क्योंकि बार बार थेषाम असो क्लेश एव क्लेश एव शिष्यते। सो क्लेश एव शिष्यते, क्लिश्यन्ति क्लेशल, ऐसे दो बार ये शब्द आता है। तो इस श्लोक यहाँ पर श्लोक रूपा श्लोक तो उल्लेख नहीं किया लेकिन अनुवाद बता दिया यहाँ पर बोलते हैं ना। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहाँ पर यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण जाने क्रिया का भक्ति भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है क्या नहीं है इसी को समझने के कष्ट का आजीवन उठाता है तो उसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतः यह पर यह उपदेश दिया है कि आत्म साक्षात्कार के लिए इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण करना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है, अंत में फल भी अनिश्चित रहता है। लेकिन भगवान का भक्ति में क्या है, फल निश्चित होता है। और क्या फल मिलता है ये लोग, और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वो बोलते हैं ये जो मार्ग है फूल भी नहीं है बोलते, क्योंकि सिर्फ सत और चित का साक्षात्कार होता है, आनंद का साक्षात्कार नहीं होता है, लेकिन भक्तों को वो भी साक्षात्कार हो जाता है ऐसे बोलते। और अंत में वो भक्ति में आ गए तो भी, क्योंकि कुछ ज्ञानियों के क्या है, अंत में बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अंत में वो भगवान के पास आ भी जाए, भगवान के शरण में आ गए, लेकिन वो निराकार का जो धारणा है उसको त्याग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे आसक्ति है, उसे त्याग करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कतिर दुःखम यहाँ पर बोल रहे भगवान। तो और एक और चीज महाप्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति को त्यागने के कारण उसके ओर लक्ष्य न देने के कारण क्या हो जाता है, नास्तिक बनने का भी चांस, मतलब संभावना रहता है, नास्तिक बनने का भी संभावना रहता है, ऐसे कहते हैं। और ये आत्मा का वास्तविक जो आनंदमय स्वरूप है उससे उसके विरुद्ध है। तो ये सब चीज़ों को वो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। आप ये काम कीजिए बाद में, तो एक ऐसे लिस्ट बनाते जाइए क्यों भक्ति योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, ऐसे बाद में इस तात्पर्य को पढ़कर। हमने सभी बता दिया है यहाँ पर अभी, लेकिन आपको अच्छी तरह से वो लिख लीजिए, बाद में उसकी पढ़ाई करके, ठीक है। हम ये सब लिख के यहाँ पर वर्णन करना चाहते थे, लेकिन समय थोड़ा कम है, इसके कारण आप लोग उसको होमवर्क भी कर करना चाहिए, आप भी प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो ये ज्ञान योग और भक्ति योग में अंतर है। तो उसके बाद ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरापात मम्यावेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो ये सब ये छठे श्लोक में जो भी शब्द आए ना, वो सब पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना। मई तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मई संन्यास्य मत परः, ये सभी पहले चर्चा कर चुके हैं हम लोग। सर्वाणि कर्माणि मई संन्यास्य मत परः अनन्येनैव योगेन मां जायन्त उपासते, मतलब दूसरे शब्दों में भक्तों के बारे में वर्णन कर रहे। तो उनको क्या करते हैं भगवान, तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरापात मव्य मैयावेशित चेतसाम। कैसे भक्ति मार्ग और भी ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ क्या है, क्यों है, इसको भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि आठवें अध्याय के चौदहवें श्लोक में हम लोग तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च नहीं तस्याहम सुलभ भारत नित्य युक्त से योगी नो कैसे शुरू, हाँ कैसे शुरू होता है तस्याहम सुलभ भारत नित्य युक्त से योगी नो श्लोक कैसे शुरू होता है 8.14 अनन्यच्छेद सतत यो मां स्मरते नित्य सस्याहम सुलभ भारत नित्य युक्त से योगी। वहाँ पर भी सुलभ पार्था बहुत सुलभ है ये। उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी चार बात बताते हैं कि कैसे भक्ति योग अन्य योग पद्धतियों से श्रेष्ठ है। उसमें एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि स्वयं भगवान सहायता करता है ना, वो उपनिषद से उल्लेख करते हैं और वो दसवां अध्याय के दसवें श्लोक भी उल्लेख करते हैं, मदाम बुद्धि योगंथम ये नमाम उदयंतिते। तो वैसे यहाँ पर भगवान बोलते हैं जो मेरे भक्ति योग के मेरे भक्त है तेषाम अहम समुद्धरता, मैं स्वयं उनको उद्धार करता हूँ। अहम समुद्र ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर शब्द, तेषाम अहम समुद्धरता। अन्य योगियों के लिए वो स्वयं प्रयत्न से अपने आप को मुक्त करना होता है, विशेष करके अष्टांग योगी या ज्ञान योगी। अष्टांग योगी धीरे धीरे ज्ञान योगी बन जाते हैं लोग, तो वो लोगों को अपने योग अभ्यास करके अपने शक्ति के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा, योग बल के द्वारा अपने आप को उद्धार करना होता है। उनको भगवान का जो सहायता है वो नहीं मिलता है, जो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर वर्णन किए आठवें अध्याय के ना चौदह तात्पर्य में। तो ये चीज़ प्रभुपाद जी भगवान यहाँ पर अहम समर्थता, मैं स्वयं आके उनको उद्धार करूँगा, मैं उनको लेकर जाऊँगा। अन्य योगी क्या है, अपने शक्ति के द्वारा वो सही समय जो है उनको चुनना पड़ता है, वो चुन के वो सही रीति से क्या करना पड़ता है उनको, ये देह को त्याग करके तो प्रवेश करना होता है आध्यात्मिक योग में। लेकिन भक्तों को ये करने की जरूरत नहीं है, स्वयं भगवान उद्धार करेंगे, सब वो देखभाल करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण और अचिरेणादि गच्छति मृत्यु संसार सागर भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा न चिरात् पार्थ बहुत ही शीघ्र चिरात मतलब बहुत लंबा समय न चिरात मतलब बहुत ही शीघ्र मैं उनको उद्धार करूंगा किससे मृत्यु संसार सागरात ये बहुत ही जगत क्या है मृत्यु संसार सागर है यहाँ पर जन्म मृत्यु है हम सब लोग इसमें तो तैरने के लिए कोशिश कर रहे हैं कभी कभी हमें ऊपर उठाया जाता है और कभी कभी नीचे मारा जाता है ऐसे पिटाई किया जाता है मारा जाता है ऊपर समुंदर में ऐसे होता है ना आपको ऊपर उछला जाता है टक करके तरंगे लहरें जब आ जाते हैं तो ऊपर आपको उछाल देते हैं और क्या कर देते हैं और नीचे भी वो मार देते हैं ऐसे बार बार ऊपर उठाया जा रहा है और नीचे हम तैरने के लिए कोशिश कर रहे हैं बीच में हबड़ू हो जाता है ना तो ऐसे होता है तो ये मृत्यु संसार सागर और बार बार मृत्यु होता है इसका अर्थ क्या है हम लोगों का बार बार मृत्यु होता है कभी ऊंचे लोक में जाता है कभी नीचे लोग ऊंचे योनि में जाते हैं नीचे योनि में जाते हैं तो ऐसे समुंदर का लक्षण होता है ऐसे स्थिति से मैं क्या करूंगा बहुत ही शीघ्र मेरे भक्तों को स्वयं मैं आके उद्धार करूंगा हम लोग चल योगक्षेम वहाम्य अहम बोलते हैं भगवान ना वैसे ही स्वयं तेषा अहम समुद्धरता मैं स्वयं आके उनको उद्धार करूंगा तो यहाँ पर वो प्रभुपाद जी एक श्लोक लेकर रहे क्या श्लोक है ये वाय वराह पुराण से नायामि परम स्थानम अचिरेनादिगति गतिम विना गरुड़स्कंदमारोप्य यथेच्छा यथेच्छम अनिवारितः तो भगवान कहते हैं मैं कैसे आऊँगा बहुत ही शीघ्र ही अचिरेनादिगतिम विना अचिरेनादिगतिम विना मतलब तो बहुत ही तेजी से मैं आऊँगा बहुत शीघ्र आ जाऊँगा नहीं तो मुझे लंबे समय तक उनको वेट नहीं करना पड़ेगा बहुत ही शीघ्र आके कैसे आऊँगा गरुड़ के ऊपर आसन होगा आस है ना वो क्या आऊँगा ऐसे बोलते और मैं उनको उद्धार करूँगा ऐसे कहते तो वो चित्र है ना इस्कॉन में आप देखा होगा भगवान गरुड़ के ऊपर वो क्या है आरोहित होके वो आ रहे हैं और ये भक्त ऐसे हाथ ऊपर उठाए भगवान उनको हाथ दे के ऐसे ऊपर उठा रहे हैं तो ऐसे आपने देखा होगा वो चित्र तो ये वो चित्र इस श्लोक के आधार पर है ऐसे भगवान स्वयं आके उद्धार करते हैं तो ये भक्ति मार्ग में या भक्ति योग में विशेषता है ये इसलिए वो श्रेष्ठ है और श्री प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं जैसे माता पिता के द्वारा बच्चा रक्षित हुआ हो तो बच्चे को बहुत ही सुरक्षता महसूस होता है वैसे भक्त को बहुत ही सुरक्षता महसूस होता है लेकिन अन्य मार्ग में नहीं हमेशा उनको क्या रहता है चिंता रहता है या भय रहता है कभी हमारा पतन हो जाएगा क्या मैं लक्ष्य को प्राप्त करूँगा कि नहीं ऐसे ऐसा नहीं तो प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाले तो वह आसानी से बच जाता है इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं मनुष्य को केवल कृष्ण बाणामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों को उपेक्षा भक्ति योग चुने तो ऐसे कहते हैं और यहाँ पर एक ग्रंथ है नारायणीय करके वहाँ से उससे उल्लेख किया गया यह वे साधन संपत्ति ही पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय इस श्लोक इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य लोग विधियाँ, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान, पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के बारे में कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु अपने आंदोलन प्रचार किया तो सभी कर्मी लोग अपने पत्नियों के बारे में बोलना बंद कर दिए, ज्ञानी लोग शुष्क चिंतन त्याग दिए, योगी लोग सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है वो सब त्याग दिया, सब लोग इसमें जुड़ गए, ऐसे बोलते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु आंदोलन का विशेषता है ना? तो क्या करना चाहिए? केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अंत में यहाँ पर बोलते हैं, कभी कभी ऐसे लोग भी कहते हैं ना, मेरे पूर्व किए हुए पाप का क्या होगा, मैं बहुत पापी हूँ, ऐसे उसका क्या होगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वो श्लोक बोल रहे, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो ऐसे वो लोग कहते हैं, चिंता मत करो उसके बारे में, मैं उसको देखभाल करूँगा। हम शैलेंद्र प्रभु से बहुत बात कर रहे थे ना, शैलेंद्र से बात कर रहे थे, मैं बहुत पापी हूँ प्रभु जी बहुत पाप कर चुका हूँ, बहुत ऐसा कर चुका हूँ, इसलिए मैं ब्रह्मचार्य आश्रम नहीं ज्वाइन कर सकता है। आप उसका मत चिंता कीजिए, वो भगवान का चिंता है ना। अपने आप को क्या कर देना चाहिए? भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो कभी कभी लोग ऐसा क्या बोलते हैं, पायस रीजंस, कारण बोलते हैं, पायस रीजंस नॉट टू अवॉइड भक्ति, भक्ति नकारने के लिए ऐसे कुछ क्या करते हैं, धार्मिक नियम बताते हैं, धार्मिक कारण बताते हैं, क्यों नहीं आया मंदिर में, मैं आज बहुत पापी हूँ, मैं ऐसे बोलते हैं, या आज मांस खाया हूँ, मांस खाना छोड़ दो ना, लेकिन क्यों खाना चाहिए, मंदिर आ जाओ। उस दिन हम एक ट्रेन में जा रहे थे, हाँ यहाँ से जा रहे थे ना हम भोपाल से, तो वो हमारे गिरिधारे गोपीनाथ को एक व्यक्ति को पुस्तक दे रहे थे, प्रभुपाद जी के ग्रंथ, उसने पढ़ा देखा और फिर वो क्या बोल रहा था, वो नहीं ले रहा, मैं वहाँ पर जाके लेता हूँ, हमारे जो शहर में है, अभी ले लो तो हमने बताया, नहीं मेरे उसको रखने के लिए जगह नहीं है, मेरे इसमें क्या है, शूज़ मेरे बैग में। तो हमने बताया ठीक है, आप एक पॉलीथीन बैग या बैग में भी अलग अलग विभाग होते हैं उसमें रखो, वैसे ठीक नहीं है लेकिन फिर भी। तो ऐसा धार्मिक कारण नहीं बताना चाहिए कृष्ण भक्ति को अवॉइड करने के लिए, नकारने के लिए, ऐसा लोग धार्मिक कारण बताते हैं, हमें पता है तुम ऊँची हो और तुम क्या है, पापी हो, वो सब पता है, इसलिए भक्ति ले लो। तो क्योंकि ये मार्ग जो है, तेषाम अहम समुद्धरता, भगवान स्वयं आके उद्धार करते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा मार्ग। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 8, मयि वामन आदस्व मयि बुद्धि निवेशया निवशिष्यसि मयि एव अत उद्धर्म संशयः। मयैव मनादस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयैव तव उद्धर्म संशय। जो अपने मन को मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। सो मयैव मनादस्व, क्या अपने चित्त को मेरे ऊपर स्थिर करो, ऐसे कहते हैं, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, तो ये बहुत ही प्रगतिशील भक्ति के बारे में यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। तो मन पूरी तरह से भगवान में स्थिर है और सारी सारी बुद्धि उनके मन में लगा है। तो इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे तब। तो यहाँ पर प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जो हमेशा भगवान में रत रहता है तो उसका परमेश्वर के साथ, भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। न संशय, ऐसे कह रहे भगवान, अतः ऊर्ध्वम न संशय। तो आरंभ में ही वो दिव्य स्थिति में रहता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो भगवान के नामों को उच्चारण करते हैं, क्योंकि नाम भगवान से अभिन्न है, तो भगवान क्या करते हैं, जिह्वा के ऊपर नाचते रहते हैं। ऐसे होते जब हम लोग भगवान के नाम उच्चारण करते हैं तो हमेशा भगवान के जो हमारे साथ रहने का जो महसूस हो जाएगा। अभी क्यों महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग शुद्धता से जप नहीं करते हैं, अभी हमारा मन स्थिर नहीं हुआ है भगवान के नाम पे, ऊपर बुद्धि और मन स्थिर नहीं हुआ है, तो इसलिए हमें उसका महसूस नहीं हो रहा है। तो जब हमारा बुद्धि और मन ऐसे स्थिर हो जाता है तो हम भगवान के साथ, भगवान हमारे साथ हमेशा है, उसका महसूस होता है। तो यह परिपूर्णता है। तो कृष्ण तब, अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्ति के जिह्वा पर नाचते रहते हैं। राधा कृष्ण, अंतरंग शक्ति मतलब राधा कृष्ण है ना, और हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है ना, राधा कृष्ण है। हरे मतलब वो श्रीमती राधा रानी है, ऐसे श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ बताते हैं। हरे मतलब भगवान के अंतरंग शक्ति है, वही श्रीमती राधा रानी है। हरा मतलब उनके शक्ति है वास्तव में, और हरे मतलब उनको हम लोग पुकार रहे हैं अंतरंग शक्ति को, ओ श्रीमती राधा रानी, हे श्रीमती राधा रानी, ऐसे कहते हैं। तो आप मुझे आपकी सेवा में लगाइए, हे कृष्ण सर्वाकर्षक कृष्ण, वो सर्व क्या है, भोक्ता है ना, सुप्रीम एंजॉयर राम, आप हमें आपकी सेवा में लगाए, ये अर्थ होता है हरे कृष्ण महामंत्र का। तो ये दोनों कृष्ण और उनकी अंतरंग शक्ति जीवा के ऊपर नाचते रहते हैं। तो सब कुछ भक्त कृष्णमय हम बन जाता है। यहाँ पर और उदाहरण दे रहे, जब भगवान को भोग अर्पण करके उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं तो सेवा में नहीं लगता, वह नहीं समझ पाता है कि ये सब कैसे होता है, जबकि भगवद्गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इस विधि की संस्तुति की गई है। जो लोग भगवान के ऐसे भक्ति नहीं करते वो समझ नहीं पाते कि इनको क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे भक्त क्या कर रहे करके। तो श्लोक क्रमांक 9, अतः चित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनंजयम्। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करो। तो यहाँ पर इस श्लोक से क्या बता रहा है, 8वें श्लोक से अलग अलग विधि बता रहा है भगवान। तो ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ऐसे परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर 9वें श्लोक में वो बताते हैं, 8वें श्लोक में जिस भक्ति का वर्णन कर रहे हैं भगवान, उसको नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वैधी भक्ति में लगना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं, इस श्लोक में भक्ति योग के दो पृथक पृथक विधियां बताई गई है। तो पहला क्या है, इसका अर्थ है कि अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, वो पिछले अध्याय में जो भक्ति का विधि है वो है, वो नहीं कर पाते हो तो ये करो, ऐसे दो भक्ति के विधियों को वर्णन कर रहे। ये दोनों क्या है, साधना भक्ति में वो विशेष करके हम लोग इसका ये भी ले सकते हैं, भाव भक्ति भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर ये प्रेम शब्द या लव भी वो उपयोग करते हैं इन इन तात्पर्यों में। तो इसलिए जो 8वें श्लोक में जो भक्ति का वर्णन हुआ है वो भाव या प्रेम भी ले सकते हैं, नहीं तो आसक्ति भी ले सकते हैं, क्योंकि इस तात्पर्य में श्लोक का देखिए, पहले विधि उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर लिया है। दूसरे विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। तो जब आसक्ति मतलब क्या है, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, नौ स्तर भक्ति में, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा रुचिस तथा शक्तिस स्वभाव और प्रेम, ऐसे। तो ये नौ भक्ति के स्तर है, स्टेजेस ऑफ 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो आसक्ति में भक्ति और आसक्ति रहित भक्ति, ऐसे दो भक्तियों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में साधना भक्ति के दो विभाग बताते हैं, एक है वैधि साधना भक्ति और दूसरा रागण साधना भक्ति। तो वैधि साधना भक्ति में एक व्यक्ति को आसक्ति नहीं रहता, और रागण साधना भक्ति में, वो दोनों साधना भक्ति है, तो उसमें क्या रहता है, आसक्ति रहता है, उसको स्पॉन्टेनियस डिवोशनल कहते हैं। आपको बाध्य नहीं करना, सुबह उठने के लिए बाध्य नहीं करना पड़ेगा, सुबह अपने आप उठ जाता है, ऐसे प्रॉपर, नहीं तो किसी को उठाना पड़ेगा, उठो उठो उठो, 4 बजे करके, है ना। तो ये अंतर है, आसक्ति नहीं रहता है, उसको वही साधना भक्ति कहते हैं। और साधना भक्ति का क्या परिभाषा है वो भी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। साधना भक्ति का परिभाषा क्या है, कृति साध्यो भवे साध्य भाव से साधना विद्या नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम गति साध्य का, यहाँ पर वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। या अतः उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना, भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार परिष्कार है। तो वो कहते हैं यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। इंद्रियों के द्वारा अभ्यास, कृति मतलब इंद्रिया या कार्य, इंद्रियों से किया हुआ जो कार्य है, कृति साध्यो भवे साध्य भाव से साधना विदा, जिन इंद्रियों के कार्यों में लगने से या इंद्रियों से युक्त जो कार्यों से लगने से भाव को प्रेम प्राप्त होते हैं या प्रेम को प्राप्त, दिव्य प्रेम या पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, प्राप्त करते हैं, उसको साधन भक्ति कहते हैं। और ये साधन भक्ति क्या होता है, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता, वो हमेशा हृदय में रहता है। वो अगले तात्पर्य में बोल, अगले पैराग्राफ में, इस ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि रदि साध्यो भवे साध्यो भाव से साधना विदा नित्य सिद्ध से भाव से, नित्य सिद्ध से वो हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है, प्राकट्यम रदि साध्यता, तो उसको प्रकट करना है। कैसे करना है, श्रवणादि कृष्ण प्रेम, वो चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है, कृष्ण कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय श्रवनादि शुद्ध चित्त खोरय उदय। ऐसा नहीं कि उसको बाहर से प्राप्त किया जाता है। श्रील प्रभुपाद वहां पर उदाहरण देते हैं, जो बालक है वो चलने के लिए उसके अंदर शक्ति रहता है, थोड़ा अभ्यास करने के बाद वो शक्ति आ जाता है, ऐसा बोलते। तो वैसे ही हमारे हृदय में वो हमेशा रहता है कृष्ण प्रेम, बाहर से उसको प्राप्त करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन उसको श्रवण आदि ये कार्यों में वैदिशा ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल सब भक्ति भक्ति के नियमों को हम लोग पालन करेंगे तो अपने आप वो जागृत हो जाता है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या विधि विधान है, वैदिक साधना भक्ति में क्या क्या विधि विधान होते हैं जिसके द्वारा राग भाव प्रेम सब कुछ प्रकट हो जाता है, उसको प्रभुपाद वर्णन वो भक्ति रसामृत सिंधु में वो 64 अंगों का वर्णन किए हैं। तो उनमें से कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, तथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्च्य विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्च्य विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि, ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिसका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के नियमित रूप से भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करते हुए मनुष्य निश्चित ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा तुम धनंजया, ऐसे कह रहे अभ्यास योग वैदिक साधना भक्ति उसको अभ्यास योग कहते हैं, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 10, अभ्यासोप्य समर्थोसी मत्कर्मो परमो भव मदर्थम विकम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो ये दैव वर्णाश्रम है यहाँ पर। सीधा वैदिक साधना भक्ति में नहीं लग सकते हो तो क्या करना चाहिए, आप दैव वर्णाश्रम में लग जाए। ऐसे मंदिर में जो भक्त रहते हैं वो सीधा वैदिक साधना भक्ति में लगे हो, पूरा दिन भर किसी न किसी अंगों का वो पालन करते रहते हैं। लेकिन जो नहीं कर पाते इसको क्या करना चाहिए, वो लोगों को ऐसे दैव वर्णाश्रम में भाग लेना चाहिए। हाँ, अपने कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी आप करना चाहते हैं, आपकी इच्छा जो भी है, आपके लिए जो भी रुचिकर है वो आप कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। कर्म करने के प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करना तुम करने से तुम पूर्ण अवस्था में सिद्धि को प्राप्त होगे, ऐसे यहाँ पर कह रहे। और श्री प्रभुपाद वो 11वें अध्याय के 55वां श्लोक उल्लेख कर रहे, मत कर्म कर्ण, हाँ वहाँ पर भी बताया ना। और कृष्ण का कर्म क्या होता है हम लोग चर्चा कर रहे थे उसके बारे में। आप भगवान के लिए मंदिर बांधना है, आप बांध काम करना चाहते हो भगवान के लिए मंदिर बांधो, या भगवान के लिए बगीचा बनाओ, भगवान के लिए फूल लगाओ, भगवान के लिए ये सब करो, तो ऐसे सब कुछ भगवान के बारे में प्रचार करो, ये सब चीज़ बताया है, ये मत कर्म कर्ण है। तो ऐसे करने से क्या होता है, भगवान को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं, सबके लिए प्रभुपाद जी आधुनिक समाज में कैसे इसको कर सकते हैं उसके बारे में भी वर्णन कर रहे हैं। तो सबके लिए धन की अवस्था होता है, भूमि की अवस्था होता है, संगठन की अवस्था होता है, श्रम की आवश्यकता होता है, ये सब क्या करना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो उसके कारण क्या हो जाता है, हम लोग सिद्धि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। है ना। तो जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए, यहाँ पर उदाहरण दे रहे व्यापार का, के लिए स्थान उपयोग की पहले कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना होती है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है, यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित करने के लिए सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुँच कर सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र है और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत, तो वास्तव में क्या करना चाहिए, पूरी तरह से कर्म को भगवान को करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर सकता है तो कुछ प्रतिशत तो करो, कुछ तो करो भगवान के लिए, ऐसे बोल रहे भगवान। जैसे आधुनिक समाज में कुछ तो करो हम बोल रहे, यही प्रचार कर रहे हैं हम लोग सब, कुछ तो करो भगवान के लिए ऐसे। ठीक है। तो स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्राप्ति के, ये भी नहीं कर सकते है, तो क्या करोगे, उसको अगले श्लोक में बता रहे, कर्म फल त्याग मत कर्म, वो अलग है, कर्म फल त्याग अलग है। तो श्लोक क्रमण द्वारा, अतैतद्दत्तसत्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्। तो ये भी कर्मयोगी है, लेकिन वो बहुत ही आरंभिक अवस्था में है, जो भगवान को सीधा अर्पण नहीं हो रहा है ना, लेकिन क्योंकि अनासक्ति है इसलिए उसको योग कहते हैं। योग हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, ये इंद्र तृप्ति या फल के लिए आसक्ति नहीं होना चाहिए, वही योग है। ऐसे पहले बहुत चर्चा हुआ इसके बारे में आरंभिक अध्यायों में, तो इसलिए ये बहुत ही निम्न दर्जे का कर्म है ये। तो कम से कम, अतए कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, इसके पहले के तात्पर्य के अंत में क्या बताए, जो सीधा हमारा फार्म कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हो सकते उनके लिए क्या करना चाहिए, कम से कम थोड़ा तो कुछ करो भगवान के लिए, ऐसे सिटी में रह के, है ना, हम लोग कहते हैं ना, किसी न कारणवश वो नहीं कर पाते हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। किसी किसी को लोन होगा या परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि वो ज्वाइन हो जाए वहाँ पर, ठीक है, तो मंदिर में रह, वो शहर में रह के थोड़ा कुछ दंड का सहायता करो या मंदिर बांधने के लिए सहायता करो, कुछ ग्रंथ प्रकाशन करने के लिए सहायता करो, ऐसा कुछ प्रभा जी बता रहे हैं। हाँ, वो एक स्तर है, और वो भी नहीं कर सकते हो, यहाँ पर प्रभुपाद इस स्तर में कहते हैं ना, कोई कोई लोग कृष्ण भावनामृत को उनको अच्छा नहीं लगता है, उनके परिवार वालों को, ये जुड़ जाते हैं कृष्ण भावनामृत के संघ से जुड़ जा गए हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता है। ऐसा है ना, यहाँ पर ऐसे हमने सुना शर्मा जी ने लैंड ले दे दिया, लेकिन उनके उधर वाले उनको अच्छा नहीं है लगता है, तो उनको अच्छा नहीं लग सकता है परिवार वालों को, इसलिए कम से कम जो उनको अच्छा लगता है उसमें तो दान दे दो, उसमें तो कुछ करो, ऐसे वो यहाँ पर भगवान मांग रहे। इससे क्या हो जाता है, कर्म फल से जो आसक्ति है वो छूट जाएगा, थोड़ा प्रगति हो जाएगा, धीरे धीरे शांति प्राप्त होगा, नहीं तो अशांत हो जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, इस श्लोक और पिछले श्लोक को के संबंध में दोनों को लागू होता है वो। तो श्रील प्रभुपाद वो श्लोक को लेकर रहे 18 अध्याय से, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणां तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अब अपने प्रवृत्ति के अनुसार जब लोग कर्म करते हैं वो प्रवृत्ति क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके अनुसार यतः प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वम इदं ततम, इसका अर्थ क्या है। वास्तव में ये जो श्लोक है वो पिछले श्लोक को लागू होता है जो हमारा भगवान के संबंध है। प्रवृत्तिर भूतानां, जो सभी जीवों के वो उद्गम है, येन सर्वम इदं ततम, उनके लिए ये सभी कार्य करना है। तो तब स्वकर्मणां तम अभ्यर्च, अपने कर्मों से उनको अभ्यर्च, उनको पूजा करने से, उनको आराधना करने से सिद्धि विंदति मानव, परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में उसको उल्लेख कर रहे हैं ताकि वो यो जो कर्म फल त्याग है उसको भी वो भक्ति में स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे वो भी आ सकते हैं। तो ये करो बोलते हैं, अभी ये भी नहीं कर सकते हो, है ना। भौतिक जगत में लोग इतना बद्ध स्थिति में है, इतना बंद गए हैं, भगवान बहुत कृपा करके क्या कर रहे हैं, कम से कम ये तो करो, 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 ऐसे बता रहे हैं। तो आगे बताते हैं, अगला श्लोक शेह क्या है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागास्त्याग शान्तिरन्तरम्। तो पहले हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं ना, पहले तीसरे अध्याय में एक सक्रिय मार्ग होता है, दूसरा निष्क्रिय मार्ग होता है, एक्टिव और इनएक्टिव। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा परा प्रोक्ता मया नग अनन्य योगी, ज्ञान योगे न सांख्यानां कर्मयोगे न योगिनां, ऐसे होते थे। वहाँ पर दो मार्गों का वर्णन किया उन्होंने, एक है ये जो कर्मयोग या सका ये सगुण मार्ग है, दूसरा या निर्गुण मार्ग है। ज्ञान योगे न सांख्यानां क्या है, निर्गुण मार्ग है। ऐसे दो मार्ग होते हैं या दो निष्ठा होते हैं, ऐसे बताते हैं। अभी इस श्लोक में वो सगुण मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकते हो तो कम से कम निर्गुण मार्ग को स्वीकार करो, ऐसे वो कह रहे, ऐसे भगवान बता रहे। कुछ तो लगाओ, इंद्रिय भोग में मत लगो, ऐसे बोले, कुछ तो करो, ऐसे बोले। सो वो ज्ञान में लगना है, और ज्ञान से भी श्रेष्ठ क्या है, ध्यान है, ऐसे कहते हैं। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद पूरा वो हम लोग बुद्धि योग या योग का सीढ़ी बनाए थे, चित्र बनाए थे ना, उसको वर्णन कर रहे हो प्रभुपाद जी पूरा इसमें। तो इस पूरा तात्पर्य में वही वर्णन आता है, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। देखो कर्म मतलब क्या है, वहाँ पर प्रेस्क्राइब नियत कर्म बता रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विच वी शैल फाइंड लास्ट चैप्टर में भगवद्गीता। जब भी कर्म का शब्द आता है तो भगवद्गीता में हमें क्या समझना चाहिए, वर्णाश्रम के अनुसार कर्म, नियत कर्म हमें समझना चाहिए। तो भगवद्गीता के अंत में जो वर्णन किया गया है वो तो करो, ऐसे बोले। तो वो पढ़िए इन समरी, दूसरा पैराग्राफ पढ़िए इसको, समराइज पूरा, ये पूरा समरी देते हैं प्रभुपाद जी क्या, आठवें श्लोक से ये बारहवें श्लोक तक इसका सार रूप वर्णन कर रहे हैं। कौन पढ़ेंगे, ललित को
सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की श्लोक विद्या है। एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि, विष्णु भावना कर्म में लौकिक प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल अंतिम त्याग करना होता है, मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, उसके बाद ज्ञान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पद करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है, या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वे पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो क्या ज्ञान ज्ञान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है, लेकिन जहाँ तक प्रवर्तिता का संबंध है उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है।
तो अभी अगले श्लोक से भगवान फिर से शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं कि भक्तों के जो गुण का वर्णन करते हैं, इसके द्वारा विल टेक द क्वेश्चन इन द एंड नो बिकॉज देन इट विल स्टॉप योर क्वेश्चंस विल गो ऑन एट लीस्ट सॉरी। भगवान यहाँ पर भक्तों के गुणों को वर्णन करते हैं जिसके द्वारा वो बहुत भगवान के लिए बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पर ये गुण क्या है, श्रील प्रभुपाद 19वें श्लोक के तात्पर्य में वर्णन करते हैं। ये गुण इसमें बहुत रिपीट हो गए, रिपीट रिपीटेशन, तो इसलिए रिपीट किया गया है क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा जोर देने के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है ये जो गुण है। तो और दूसरा चीज श्रील प्रभुपाद बोलते हैं उस तात्पर्य में ही हरा वो श्लोक बोले करते हैं यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महात्मना मनोरथेना सतो दावतो बहि। कि जिनके जिनको अटूट श्रद्धा है इस भक्ति मार्ग में उनके अंदर सभी अच्छे गुण देवताओं के सभी अच्छे गुण हैं वो रहते हैं। जिस व्यक्ति भगवान के अभक्त है भगवान हरि के भक्त नहीं है उनके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो मन के रथ पर चलते रहते हैं। मनोरथे नासतो दावतो बहि, मन का आश्रय लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उस श्लोक का हराव भक्त से कुतो महात्मना एक श्लोक उसको सिर्फ वो लाइन को उल्लेख करके क्या बताते हैं कि हरि के अभक्त है उनके अंदर क्या गुण हो सकते हैं, या दूसरे शब्दों में जो भगवान कृष्ण के भक्त है उनके पास ये गुण होना चाहिए। ये गुण नहीं है तो वो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, है ना। सभी लोगों को गुण के अनुसार ही हम लोग पहचानते हैं ना, उनके क्या गुण है उसके आधार पर ही। तो भक्त को ये गुण होना चाहिए ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आरंभ में ये सभी गुण ना हो तो ये गुण सभी भक्तों के 26 गुण होते हैं, तो उनमें से प्रमुख गुण क्या है, कृष्ण ही का शरणम, भगवान कृष्ण से वो शरणागत होते हैं। वो ये गुण होने के कारण उनके अंदर धीरे धीरे सभी अन्य गुण भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन वो तो गुण तो होना ही चाहिए तभी वो भक्त बनते हैं। हु इज अ वैष्णव, वैष्णव मतलब जो ये गुण हो वो वैष्णव है ऐसे। तो और सभी ये गुणों को कैसे भगवान कृष्ण या भक्ति के संबंध में ही हमें समझना चाहिए। ऐसे भौतिकवादियों के पास भी हो सकते हैं, लेकिन हम जैसे हम लोग कह रहे थे ना साधु मतलब भगवान कृष्ण के भक्त ऐसे। तो श्लोक क्रमांक 13 और 14 अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रया तन्मये वच निर्ममो निरहंकारः समभूतः सुखक्षिणी संतुष्टा सततम् योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मया कृता मनोबुद्धिर्मद्वत् समय प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और नित्य अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और ये सभी श्लोकों के अंत में क्या आएगा, सचमे प्रिय मत भक्ता सचमे प्रिय सचमे प्रिय सचमे प्रिय, वो मेरे लिए प्रिय है, वो मेरे लिए प्रिय है। कौन सा भक्त मेरे लिए प्रिय है, यहाँ पर भगवान कहते हैं। तो एक प्रश्न उठ सकता है ना, क्या भगवान हमारे भक्ति से प्रसन्न हो गए, ऐसा प्रश्न उठ सकता है ना, हम भक्ति की सेवा कर रहे हैं, क्या भगवान हमारा भक्ति से प्रसन्न हुए, ऐसे प्रश्न हो सकता है, या हमारे जो भी भक्ति सेवा हम लोगों ने किया उसको भगवान स्वीकार किए, ऐसे प्रश्न हो सकता है ना। उसके लिए यही उत्तर है, ये सब गुण है तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हमें प्रसन्न है, ठीक है ना। तो यही क्या है, बैरोमीटर माप है, ऐसे वो हमें समझना चाहिए। सो मद भक्त सचमे प्रिय, तो क्या गुण है, पहले ईर्षा विहीन है, अद्वेष्ट ईर्षा नहीं करते हैं या किसी से शत्रु भावना नहीं करते हैं, सर्वभूतानां मैत्रेय करणीय वचः, तो कोई उनसे शत्रु भावना करते हैं तो वो लोग क्या सोचते हैं, ये भगवान की कृपा से हमारे कर्म के कारण ऐसे कर रहे हैं, ऐसे वो सोचते हैं। तो है ना, यहाँ पर भागवत से उल्लेख है शिला प्रभुपाद, तो तत्तेनुकंपा सुषुमिक्षमाण गुंजान एवात्मकृतं विपाकं तद्वा वपुर्भिर्भजत विदधा नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाव। तो इस श्लोक में ये भी ब्रह्मा जी ने कहा था, आपके जो भक्त है, भगवान से प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी, आपके जो भक्त है जब भी उनके जीवन में कोई कष्ट आते हैं वो आपकी अनुकंपा समझकर, भगवान मुझे ये साक्षात्कार दे रहे हैं कि बहुत ही जगत दुख का स्थान है, आपकी अनुकंपा समझकर क्या करते हैं, अपने मैंने पूर्व किए हुए कर्म के कारण मुझे और भी ज़्यादा कष्ट होना चाहिए था लेकिन भगवान कृपा करके मुझे कम दे रहे हैं, ऐसा सोचते हुए वो उसको भुगतते जाते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के कारण क्या हो जाता है, भुंजान एवात्मा आत्म एवा भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम, भुंजाना मतलब उसको भोगना, जो भी आता है कष्ट उसको अनुभव करना, क्या समझकर, एवात्मा कृतम मैंने पूर्व में ये कर्म किए थे, तो जीवे तक, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, भक्ति की सेवा में या भक्ति कार्यों को करते रहते हैं, भगवान के सामने दंडवत नमस्कार करना वगैरह, तो गुंजान ये बात को कृतम भी कहा, तद्वाग वपुर्वीर विदधान नमस्ते, तद्वाग वपुर्वीर वाणी के साथ भगवान के नामों को उच्चारण करना, कीर्तन करना, उनको गुणगान करना, और शरीर के साथ वपुर उनको दंडवत करना या सेवा करना अन्य करते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान के धाम का योग जाने के लिए योग्य बनते हैं, या धाम का जो ऐश्वर्य है उसको प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाते हैं, ऐसे वो कहते हैं जीवे तो इस जगत में रह के भी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो श्लोक है भक्त का जीवन का मार्गदर्शक दर्शिका है, तो भक्त को इस श्लोक के अनुसार ही जीवन बिताना है, ऐसे कहते हैं, विचलित नहीं होना। क्यों इस श्लोक को यहाँ पर किस संबंध में प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये व्यक्ति ये शत्रु भाव शत्रु बन गया है, क्योंकि ये मेरे कर्म के अनुसार, इस जगत में जो कुछ भी होता है ना वो हमारे पूर्व कर्म के कारण होता है, कोई हमारा माता पिता बनते हैं वो कर्म के कारण, हमारा कोई भाई बहन बनते हैं वो कर्म के कारण, ऐसे परिवार में हम लोग आ जाते हैं कर्म के कारण, या कोई लोग कुत्ते बिल्ली के परिवार में जाते हैं उनके कर्म के कारण, कोई शत्रु और मित्र बन जाता है वो कर्म के कारण, कोई हमारा प्रोफेसर बन जाते हैं वो हमारे कर्म के कारण है ना, है कि नहीं, स्कूल टीचर कैसे थे? अच्छा नहीं थे ना? तो वो कर्म के कारण है। तो ऐसे कर्म के कारण हमारे ऐसे शत्रु और मित्र भी बन जाते हैं। इसलिए हमें कोई हमारा शत्रु भाव रखता है हमारे ओर से, उससे विचलित नहीं होना चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रेय करना ये वचन मैत्रेय। तो श्रील प्रभुपाद वो हमारे आंदोलन में एक कुछ वर्ग था, एक 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 प्रभुपाद जी के शिष्य थे, शिष्य बने वो, तो सिद्ध स्वरूपानंद स्वामी ऐसे कुछ प्रभुपाद जी उनको नाम दिया था। वो क्या किया, पहले ही वो इस्कॉन जब प्रभुपाद जी थे तभी इस्कॉन से अलग हो गए, हमें प्रभुपाद चाहिए लेकिन इस्कॉन नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि वो त्रस्त थे इस्कॉन के भक्तों से, वो त्रस्त थे। तो प्रभुपाद जी बोले उनको कि वाई यू आर सो डिस्टर्ब ड्यू टू योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कर्म, ऐसे बोलते आपके कर्म के जो यंत्र है उससे क्यों उतना उचलित हो रहे हो, ऐसे प्रभुपाद जी ऐसे कहते। तो ये कर्म ऐसे हमारे क्या है नेता मिले भक्ति में लिए ऐसे इनके बारे में नहीं बोलता मैं, हमें ऐसा नेता मिल जाते हैं या हमारे ऐसा अनुयायी मिल जाते हैं हमारे हमेशा तकलीफ, कुछ भक्त लोग हमेशा वो लीडर को तकलीफ देते ही रहते हैं। तो ये सब कर्म का क्या है फल है। क्या करना, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रेय करणीयं च, ऐसे में चलना चाहिए, ठीक है। तो करुणा ये वचन, भक्त हमेशा दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं और निर्ममः, तो निर्ममः मतलब क्या है, क्योंकि शरीर से उनको आसक्ति नहीं रहता है, तो इसलिए वो शरीर के साथ संबंध जो भी सुख दुख आते हैं उससे वो मुक्त रहते हैं। और उसके बाद इसलिए जो शरीर से वो अपने आप को नहीं पहचानते हैं उसके कारण निरहंकार, उनमें कोई अहंकार का भावना नहीं रहता है और सुख दुख का क्षम सुख क्षमी, सो सुख और दुख में समभावना रखते हैं। और क्षमी मतलब सहन करना, तो सहन करना जो कुछ भी आता है भगवान की कृपा से उसको सहन करना होता है। इस जगत में ना हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं कैसे हमारा जीवन को सुविधाजनक बनाएं और दुखों से कम कर दुखों को कम करें, लेकिन फिर भी इस जगत में आते रहेंगे तो उसको सहन करके चलना होता है, इसको क्षमी कहते हैं, है ना। कृष्ण भावनामृत में भी ऐसे होता है, ये हो जाए मैं शांति से भक्ति करूँगा, ये हो जाए शांति से भक्ति करूँगा, ये हो जाए शांति से भक्ति करूँगा, ऐसे हमेशा हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन ऐसा स्थिति भौतिक जगत में कभी मिलने वाला नहीं, ये भौतिक जगत ही ऐसा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, टॉलरेंट क्षमी होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, उसको क्षमा कहते हैं। तो उसके बाद में वो संतुष्ट, उसमें उसके बाद में क्या आता है, संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट संतुष्टता कब मिलता है पता है, जितना इस जगत में हम लोग प्रयास करके ज्यादा इकट्ठा प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं उतना हम लोग लोभी बन जाएंगे। संतुष्टता कब मिलता है, जब हम लोग कम से कम जरूरतों से तो रहने के लिए सीखते हैं तभी संतुष्टता मिलता है। He does not endeavor much to achieve something with great, therefore he is joyful. तो प्रयास से कभी सुख नहीं मिलने वाला। आधुनिक जमान प्रयास के सिद्धांत के आधार पर ज्यादा कर्म करो 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 वर्क 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 वर्क, बहुत प्रयास करो, बहुत प्राप्त करने के लिए कोशिश करो, वो कभी सुखी नहीं हो सकते, संतुष्ट है इसलिए। और उसके बाद क्योंकि वो भक्त ही इज कंप्लीटली परफेक्ट मिस्टिक बिकॉज सततम योगी, संतुष्ट सततम योगी, वो हमेशा योगी है। योग का अर्थ होता है इंद्रिय समय, इंद्रियों को संयमित करना, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन के मार्गदर्शन में वो योग भक्ति में लगे रहते हैं, इसके कारण वो हमेशा उनके इंद्रियां नियंत्रित रहते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे पहले कि जब तक ऐसे मार्गदर्शन में कार्य नहीं करते हैं तो तब तक हम लोग ये गुणों के प्रभाव या इंद्रियों का इंद्रियों से हम लोग गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते और इंद्रियों को निग्रह नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग हमेशा स्थिर रहना चाहिए, इसलिए हम सततम योगी बन जाते हैं। संतुष्ट सततम योगी, उसके बाद में क्या आता है, यथात्मा दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय मतलब, तो वो हम लोग भक्त तीन प्रकार के भक्तों के 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में तीन प्रकार के भक्तों के बारे में चर्चा कर रहे थे ना। तो पहला है कि कोमल श्रद्धा, जो कनिष्ठ होता है उसका श्रद्धा कोमल रहता है, कोई आके उनको जोर से प्रचार कर दिया तो वो यहाँ से चला जाएगा, वो उसका कोमल श्रद्धा। लेकिन दृढ़ श्रद्धावान, वो मध्यम भक्त क्या होते हैं, दृढ़ श्रद्धावान, और ज्ञान भी रहता है उनका शास्त्र के। तो और जो उत्तम भक्त वो क्या होते हैं, वो शास्त्र का ज्ञान भी बहुत ज्ञान भी रहता है, वो उसको प्रस्तुत करने में भी बहुत निपुण रहते हैं और उनका श्रद्धा भी अटूट रहता है। तो विशेष करके यहाँ पर यथात्मा दृढ़ निश्चय मतलब जो दृढ़ श्रद्धावान है उनके बारे में बताया जा रहा है, उनकी जो दृढ़ता है वो स्थिर रहता है, वो किसी को भक्ति के ऊपर उनको कोई भी पथभ्रष्ट नहीं कर सकते हैं। तो बाद में जाके भगवान ये तीन प्रकार के दृढ़ता के बारे में भी वर्णन कर रहे हैं, हम लोग उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर चुके थे पहले। तो उनका दृढ़ता है अटूट रहता है, वो सत्वगुण में जो दृढ़ता रहता है वो अटूट रहता है, वैसे दृढ़ यथात्मा दृढ़ निश्चय। और मई अर्पिता मनो बुद्धि यह मद्भक्ता स मे प्रिय। तो तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंत में वो कहते हैं कि ऐसे भक्ति क्या है, बहुत ही विरला है। जिस इस श्लोक में जो भक्तों के लक्षण और वर्णन किया जा रहा है, ऐसे भक्त और भक्ति बहुत ही विरला है। लेकिन फिर भी हम लोग भक्ति मार्ग में लगने से क्या कारण हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना, क्यों ये वैसे विरला है बोलते हैं, 8वें श्लोक में इसका वर्णन आता है ना, मई अर्पिता मनोबुद्धि क्या है, 8वें श्लोक क्या है, मई एव मन आदस्त्व मई बुद्धि निमेशया निमशिष्यसि मई एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। ये भक्ति जो है विरला है, तो इसको हम लोग समझेंगे। भाव भक्ति को प्राप्त करना क्या है, बहुत ही विरला है, सुदुर्लभो क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभो सांद्रानंद विशेषात्मा श्रीकृष्ण आकर्षणी च स। ऐसे राग और भाव भक्ति प्राप्त करना बहुत ही विरला है इस जगत में, विरला ही पाया जाता है ऐसे। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 15, यस्मन्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च हर्षावशभयोद्वेग मुक्तयो मुक्तय स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किए जाते जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च।
तो भक्त क्या है, दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं, वो
एक चींटी को भी वो कष्ट नहीं देते हैं, चींटी को भी मारते नहीं है, चींटी है तो वो उसको पार करके जाते हैं या साइड में ना चले जाते हैं, उसको उसके ऊपर पाँव नहीं रखते, तो चींटी को भी नहीं मारते हैं भक्त, इसलिए उनके द्वारा किसी को कष्ट नहीं होता है। विशेष करके इस भौतिक जगत में कष्ट क्यों आता है पता है, एक दूसरों के कारण जो कष्ट आते हैं क्यों आते हैं, क्योंकि सभी लोग इंद्र तृप्ति की स्पर्धा में लगे रहते हैं, कॉम्पिटिशन, और ईर्ष्या करना शुरू करते हैं और दूसरों को कष्ट देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति इंद्र तृप्ति से मुक्त रहता है, उसके लिए कोई ऐसा दूसरों को उनसे उनके द्वारा कष्ट नहीं होता है और उनसे कुछ कोई कष्ट नहीं होता है। तो भगवान की कृपा से ये सब प्राप्त हो जाता है, ऐसे होता है। इसके पहले भी वो चर्चा हुआ था ना, वो सबके लिए प्रिय है, सभी उनके लिए प्रिय है। तो योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्म जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपी न लिप्यते, पंचम स्कंद में सभी जीवों के लिए वो प्रिय है, सबके लिए वो प्रिय है, उनके लिए सब प्रिय है, ऐसे कहा गया। तो ये उनका गुण है, लोकानो द्विजते हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तो ये प्रिय। पिछले श्लोकों में क्या हुआ था, सम दुख का सुख आया था, यहाँ पर हर्षामर्ष भयोद्वेग इक्विपोइजन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस फियर एंड एंग्जाइटी। तो पिछले श्लोक में आया था ना सम दुख सुख, उसको ही नकारात्मक दृष्टिकोण से बता रहा है, हर्ष और हमर्ष में वो समभाव रखते हैं और भय और चिंता भी नहीं रहता है। तो जनरली जो भौतिकवादी लोग होते हैं कि उनको कोई ऐसे सुख का क्या हो जाता है, स्थिति पहुंच जाता है तो बहुत ही विचलित होता है। उस दिन हम बता रहे थे ना, प्रभुपाद जी कहते कलकत्ता में वो एक स्वामी और उसके सेवक दोनों जाके कुछ लॉटरी टिकट लेकर आए, और स्वामी ने एक दिन बताया आपका 10 करोड़ का 10 लाख का लॉटरी लग गया, उसको सुन के तुरंत वहीं पर उसको हार्ट अटैक हो गया। ऐसा है वो। लेकिन भक्त ऐसे नहीं होते, जो भी सुख का स्थिति होता है या दुख का स्थिति, अंत में ये सब क्या है, क्षणिक अस्थाई है, बहुत ही जरूरत। हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तो यह सच में प्रिया। भयोद्वेग उनको कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं रहते, इसके कारण उनका कोई भय नहीं रहता है। और जब वो यशस्वी कुछ कोई भी चीज़ में कोई यशस्वी नहीं होता था, वो निरुत्साही नहीं बनते हैं, तो वो भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं हमेशा। फल के लिए जब हम भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं तो फिर ऐसा स्थिति नहीं हो जाए, भगवान ने नहीं दिया ठीक है, ऐसे वो आगे बढ़ते हैं। सो सच वे व्यक्ति भगवान के लिए प्रिय। अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी पल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है, अनपेक्षा तो अनपेक्ष यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसको वर्णन करते हैं कि तो विशेष करके क्या है वो अनपेक्षा शब्द को धन के संबंध में वो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। वो आशा नहीं करते हैं, जो अपने आप कोई उनको दे देते हैं तो उसको स्वीकार करते हैं, उसके लिए संघर्ष भी नहीं करते हैं। तो जब भी भगवान की कृपा से उनको धन प्राप्त हो जाता है तो उससे वो ज्यादा विचलित नहीं हो जाते, है ना। तो लोग हमेशा धन के पीछे पड़े रहते हैं, बौद्धिक जगत में, संसार में, है ना, धन 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 सब लोग। हम जैसे हरे कृष्ण कह रहे हैं, वो लोग हरे धन 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 करके उसका उच्चारण करें, हाँ, है ना, मनी 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 करके। और जब भी वो मिल जाता है तो इतना वो विचलित हो जाते हैं, उसको अंधाधुंध क्या कर देते हैं, उसको दबा देते हैं। तो ये उनका स्थिति है। लेकिन भक्त क्या होता है, अनपेक्षा होता है, शुचि, शुचि मतलब स्वच्छ रहते हैं, वो कम से कम 2 बार स्नान करते हैं, ये शुचि शब्द का अर्थ है। अंदर का शुचि कैसे होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बाहर का शुचि क्या है, स्नान करने से होता है। फिर उसके बाद में दक्ष, तो दक्ष का शब्द का अर्थ है कि वो शास्त्र के सभी जो सार है उसको, मर्म जो है वो समझते हैं, इसलिए जीवन के सभी कार्यकलापों में वो दक्ष रहते हैं। सो अ डिवोटी इज ऑलवेज एक्सपर्ट बिकॉज ही इज फुल्ली नो द एसेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ एंड इज कन्विंस्ड ऑफ अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर्स। जैसे हम लोग देखते हैं दक्ष मतलब प्रॉपर जी, कभी कभी वो भी वर्णन करते हैं, वो बहुत ही कार्यों में भी बहुत दक्ष रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं। ऐसा नहीं कि भक्त बनने के कारण हम लोग क्या है, बौद्धिक कार्यकलापों से हम उसमें, जैसे अभी हम लोग मंदिर में रहते हैं, मंदिर के जो लैंड है उसको रजिस्टर करने के लिए हमें कोई न्याय के बारे में, लॉ के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, है ना, कैसे होता है ये सब। बौद्धिक का एक दृष्टिकोण से सीधा भगवान के भक्ति के अंग नहीं है ये सभी, लेकिन भौतिक भगवान के तो सहायता करते हैं भगवान को भक्ति करने के लिए। तो उसमें भी व्यक्ति दक्ष, भक्त को दक्ष होना चाहिए, ये सब चीज़ ज्ञान होना चाहिए उनको, जो भक्ति के लिए अनुकूल कारक है, तथाकथित वो भौतिक कार्य है तो भी। तो प्रभुपाद जी हमेशा रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन करते थे, उनको माता, उनको पिताजी को, ये जो पिताजी और उनके जो अंकल थे, पिताजी के भाई थे, उनको जेल में डालने के लिए आए, लेकिन वो कहीं पर बाके चले गए वो। और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ उस समय तो गोस्वामी नहीं थे वो, रघुनाथ दास गोस्वामी को वो जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद में वो जेलर के साथ ऐसे बात करते हैं वो तो वो मुसलमान रहते हैं वो ऐसे बात करते हैं, तुम मेरे भी चाचा के समान हो। भाई भाई के बीच में कभी क्या है विवाद हो सकता है, उससे क्यों आप इतना क्रोधित होना चाहिए, ऐसे कुछ बोल देते। और ऐसे उनके बात, उनके वचन इतना ऐसा होता है कि उसकी आंखों में अश्रु आके उसके जो भी दाढ़ी इतना रहता है ना वो सब गीले हो जाता है ऐसा वरना। तो फिर वो सुनकर उनको छोड़ देते हैं, फिर उनके बीच में समझौता करते थे। तो ये दक्षता है कि नहीं। और उदासीन मतलब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो ये भी ऐसे अलग अलग पार्टी पॉलिटिक्स में वो भाग नहीं लेते हैं, उससे वो अलग रहते हैं, उससे भिन्न रहते हैं। ये मेरा बीजेपी है या मेरा क्या है, कांग्रेस है या मोदी है, राहुल है, कोई भी है, उसमें कुछ लेना देना नहीं, इसलिए वो उदासीन है। और उसके बाद गतव्यतः, वो कभी व्यतः व्यथा से भी मुक्त रहते हैं। दूसरे अध्याय में कहाँ पर वर्णन हुआ इसका, व्यथा का? यम ही ना व्यतयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। ये अमृतत्व या मुक्ति का अधिकारी है ऐसे कहते हैं। सो ही इज नेवर फेल्ड। तो मतलब जो भी कष्ट आते हैं उससे वो बहुत उनको यातनाओं से मुक्त रहते हैं। और उसके बाद में बता देता है सर्वारंभ परित्यागी। तो वो ऐसे भी कार्य नहीं करेंगे जो भक्ति के लिए अनुकूल कारक नहीं है। उदाहरण तौर पर सुनिए उदाहरण यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। उदाहरण श्लोकों पर किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगता जिससे उसके भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण कर सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता है। तो भगवान के लिए ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं लेकिन बड़े बड़े घर बांधना उसमें वो प्रयास नहीं करते भक्त। आप इतिहास में देखेंगे तो बड़े बड़े हम दक्षिण भारत में भी हम लोगों ने देखा है, बड़े बड़े हजार साल से भी ऐसे कई मंदिर हैं भगवान के। वो मंदिर अभी भी है लेकिन उसके इर्द गिर्द जो घर थे वो नहीं है, है ना। इसका अर्थ क्या है, मंदिर बहुत ही वैभवशाली से वो बहुत ही अच्छी तरह से बांधते थे लेकिन अपने घर के लिए वो ज़्यादा प्रयास नहीं करते थे, थोड़ा कुछ ऐसा ही सिंपल तो बनाते थे। वो एक पाश्चात्य देश के एक व्यक्ति ने सभी जगह भारत में घूम के कुछ चित्र निकाले 19वीं सदी में, जब और भी भारत बहुत ही सरल था। इतना ये सभी क्या है ऐसे इंडस्ट्री वगैरह नहीं। वो श्रीरंगम मंदिर है ना, रंगनाथ जी के जो मंदिर है उसका चित्र बनाया देखा है। वो चित्र के इर्द गिर्द आप देख वो मंदिर के इर्द गिर्द देखेंगे तो छोटे 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 ऐसे कुटिया बस वैसे उसमें ही भक्त लोग रहते। तो ये सर्वारंभ परित्यागी मतलब वो ऐसे ज़्यादा प्रयास नहीं करते। वैसे देखेंगे तो भागवत में और भक्ति रसामृत सिंधु में मंदिर बांधने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए, वो भक्ति के लिए अनुकूल कारक नहीं है। भक्ति में भी जो प्रयास वो भी नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन कर सकते हैं। तो दोनों होना चाहिए, दोनों देखना चाहिए, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 17 यो नरश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रियः। जो न भी हर्षित होता न शोक करता, जो न तो पछताता न इच्छा करता, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यो न रश्यति न द्वेष्टि। तो कभी हर्षित नहीं होते हैं, कभी वो दुखी नहीं होते। इसके पहले भी समा दुख का सुख उसमें आया था ना, वो हर्षा मर्षा भयोद्वेगर बार बार ये दोहराए जा रहा है यहाँ पर कि भौतिक जगत क्या है, ये द्वंद्वों में रहता है। सभी हमेशा द्वंद्व है इस भौतिक जगत में, कभी हमेशा आपको सुख नहीं मिलने वाला है, कभी हमेशा दुख भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए इसको बार बार दोहराया जा रहा है ताकि हम लोग उससे विचलित ना हो जाए। तो प्रभुपाद इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी ऐसे होता है ना, जो प्रचारक होते हैं प्रचार करते करते रहते हैं, कोई फल ही नहीं, कोई भी भक्त नहीं बनता, या ऐसे गुरु होते हैं उनके कोई शिष्य नहीं होते हैं, या कोई माता पिता होते हैं कोई गृहस्थ होते हैं उनके कोई बच्चे नहीं होते हैं, उसके लिए वो दुखी नहीं होते।
या वो प्राप्त होने के बाद वो सुखी बहुत हर्षित नहीं होता। ठीक है, हमारा सेवा मेरा सेवा है, मुझे आगे बढ़ाता रहना है, वो ऐसे सोच। घर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें बच्चा नहीं होते हैं तो ये गृहस्थों के लिए विशेष करके, तो भगवान भगवान को ही अपना बच्चा मानना चाहिए, उनको ही सोचना, उनको ही पालन करना चाहिए, वही बच्चे हैं। ऐसे एक उदाहरण देते हैं वो तृतीय स्कंद में, उनका नाम कहा था गोविंद कांड। तो उन्होंने उनको कोई बच्चे नहीं थे, तो फिर वो भगवान से प्रार्थना किया मेरा कोई कौन श्राद्ध करेंगे ऐसे करके, तो भगवान ने बताया मैं करूँगा आपका श्राद्ध। तो इसलिए वो भगवान ने उनका मृत्यु होने के बाद भगवान स्वयं आके वो श्राद्ध किए। तो ये अभी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे उनके उनके बारे में तो ऐसे। इसलिए वो है तो है, नहीं तो नहीं है, ठीक है आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके न सोचती न कांक्षती, हम लोग हमारे पास जो नहीं है उसके लिए आशा करते हैं, कांक्षता करते हैं, और जो नहीं है उससे क्या हो जाता है, हम लोग उस या नहीं है या जिसको गवा देते हैं हम लोग उससे बहुत दुखी हो जाते हैं, शोक करते हैं। शोक करना अज्ञान का लक्षण है या तमोगुण का लक्षण है, शूद्र का लक्षण है, ऐसे दूसरे अध्याय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और कांक्षता बहुत इच्छाएँ होना क्या है, वो रजोगुण का लक्षण है, न सोचती न कांक्षती। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रिया, और शुभ और अशुभ दोनों को वो त्याग देते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में अंत में शुभ भी क्या है, वो अशुभ ही है, क्योंकि आत्मा को फिर से इस जगत में जन्म लेने के लिए बाध्य कर देता है। तो भगवान की संतुष्टि के लिए सभी प्रकार के कष्ट वो लेने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 18 और 19। क्षमा शत्रु च मित्रे च कामानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु क्षमा शङ्का विवर्जितः तुल्यानि संतुष्टोऽयेन। जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है ना, पहले श्लोक में वही है ना, अद्वेष्ट सर्वभूताणां मैत्रेय कर्मणः। जो मन तत् यहाँ पर सदैव संकुचित कुसंगति से दूर रहते हैं, या क्योंकि वो दोहराए गए हैं इसलिए प्रभुपाद जी उसका वर्णन करते हैं। जो मान तथा अपना शीत तथा गर्मी सुख तथा दुख तथा यश तथा अपयश में समभाव रखते हैं, इसको पहले भगवान वर्णन कर चुके हैं। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहते हैं, कुसंगति से दूर रहते हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, ये पहला नियम है ना। तो असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, कृष्ण भक्त है, स्त्री संगी एक प्रसादो कृष्ण भक्त आर। तो असत्संग त्याग करना वो पहला करता है भक्त का, ये पहला करता है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि भक्त लोग शहर में रहे, ब्रह्मचारी को छोड़ो, ब्रह्मचारी तो भक्तों के संग में ब्रह्मचारी रहता है, लेकिन बाहर के जो भक्त है हम ये नहीं चाहते कि वो शहर में रहे। शहर में रहना मतलब क्या होता है, कुसंगति में रहना, ये भक्त का पहला कर्तव्य है। शहर में रहना, विश्वविद्यालय में पढ़ना, ये सब क्या है, तो सत्संग में रहना, तो वो जब तक असत्संग में रहेंगे तब तक भक्ति में प्रगति नहीं होता है, क्योंकि प्रगति नहीं होगा। आप सब जानते हैं ना असत्संग का कितना शक्तिशाली प्रभाव होता है, कितना भी हम प्रयास करें हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्त्री संगी कौन असत्संग है उसका वर्णन करते हैं, जो स्त्रियों का संग करते हैं। भौतिकवादी लोग सिर्फ स्त्रियों के संग करने में रुचि रखते हैं, ये भौतिकवादी लोग।
स्त्री संगी एक कप्य साधो कृष्णा भक्त आर। दूसरा कौन सा है? कृष्ण के अभक्त होते हैं मायावादी नास्तिक लोग होते हैं, वो दूसरा वर्ग में आते हैं। इन दोनों को त्याग देना चाहिए, ठीक है? स्त्री संगियों को त्याग देना चाहिए, ठीक है? तो और ब्रह्मचारियों को ज़्यादा गृहस्थों से भी ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है? जो जितना प्रचार कर, उसके अर्थ है प्रचार करने के लिए जो जरूरी है आप उनको प्रचार करते हैं उतना काफी, ठीक है? क्योंकि अंत में वो लोग उसके साथ, ठीक है? कितने भी अच्छे वक्त हो अंत में वही है ना। तो ये तो क्या बता रहे? और दूसरा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि निंदा तुल्य मौन क्या है वो दो, क्या बोलते संग संग वर्जिता है तुल्य निंदा स्तुति मौनी। तो वो तुल्य निंदा स्तुति, वो निंदा और स्तुति से वो समभाव से देखते हैं। भौतिक जगत में है तो कोई ना कोई आपको निंदा करते रहेगा, भौतिक समाज में ऐसे होता है, लोग निंदा करते रहते हैं। तो एक दृष्टिकोण से अच्छा है, कोई हमें निंदा करते हैं तो वो अच्छा है, हमें सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, वो एक अवसर दे रहे। तो वो कन्नड़ भाषा में एक वैष्णव कवि थे, उन्होंने लिखा, उन्होंने क्या बताया, हमारे इर्द गिर्द स्वर होना चाहिए। ऐसा स्वर क्या करते हैं, मल को खाते हैं, गंदगी को खाते हैं, हमारे जो गंदगी है ऐसे वो निंदा करके हमें खाते हैं। अच्छा है ना? तो ऐसे वो, तो ये भौतिक जगत का लक्षण है, कोई ना कोई हमें क्या करते हैं, निंदा करते रहते हैं। ये भौतिक जगत का स्वभाव है, वो दिस इज द नेचर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। और जो कृत्रिम यश है अपयश है उससे भी भक्त क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। तुल्य निंदा स्थिर मामी संतुष्टो ये न के नचित। तो मौनी, तो मौनी मतलब कुछ नहीं बोलना, क्या है, मौन रहना। मौन का अर्थ नहीं कि मुंह बंद रखना हमेशा, मौन का अर्थ है कृष्ण भक्ति के बारे में चर्चा करना हमेशा। तो कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई विषय को वो नहीं बोलते, इसलिए उसको मौनी कहते हैं। तो वैसे कई लोग आध्यात्मवादी लोग आता तथाकथित मौन का मौन धारण करते, लेकिन वो क्या है, लिख के बोलते, वो भी बोलना है ना, वो क्या मौन होता है, है कि नहीं? लिख के बातचीत करना भी क्या मौन नहीं है, है ना? तो इसका अर्थ है कि कोई भी मौन नहीं सकता। कभी कभी वो मुंह, उनका मुंह बंद करना, मुंह बंद रखना भी अच्छा है। प्रभुपाद जी ऐसे बताए ना, वृंदावन में उनके कुछ शिष्य आके बताए कि ये जो बाबा है 15 साल से कुछ बोला ही नहीं उसे। प्रभुपाद जी अच्छा हुआ कुछ बकवास बोलने से वो मौन है, अच्छा है बकवास है बकवास। तो ऐसे, लेकिन भक्त का मौनी, मौन का अर्थ होता है वो भगवान के बारे में हमेशा गुणगान, भगवान को छोड़कर अन्य कोई चीज नहीं बोलते, तो ये मौन। और उसके बाद मौनी संतुष्ट हो ये न के नचित। तो संतुष्ट, इसके पहले भी तुष्ट आया था, तो संतुष्टि आया था, वो ज़्यादा प्रयास नहीं करते है, जो भी उतना आता है। लेकिन यहाँ पर इसमें संतुष्टि का शब्द का अर्थ है खाने के संबंध में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं उसको। संतुष्ट मतलब आज अच्छा प्रसाद नहीं मिला, ठीक है, वो उससे संतुष्ट हो जाता है। अच्छा प्रसाद मिल गया, ठीक है, वो भी ठीक है, ये ऐसा नहीं बन रहा है, वैसा नहीं बन रहा है, ऐसे ग्रम्बलिंग नहीं करते, जो भी है। वैसे प्रशासक वर्ग को क्या करना चाहिए, अच्छा हमेशा प्रयास करना चाहिए कि अच्छा प्रसाद हम भक्तों के लिए, और भक्त लोग क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है ना। नहीं तो वो किचन इंचार्ज भाग जाएगा यहाँ से। सब लोग उनका अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग रुचि होता है, अलग अलग उनको अलग अलग चीज़ चाहिए, तो कौन उसको सभी करेंगे, है ना। हमेशा इस्कॉन में जब भी इष्ट गोष्ठी होता है वो प्रसाद का समस्या आ जाता है पहले। उसके लोग इतना तनाव, इतना वाद विवाद होता है ना। इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, और जो कुछ रसोई बनाते हैं या उसका व्यवस्थापना करते हैं उनको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कुछ अच्छा प्रसाद, तो ये तब सब कुछ ठीक सब, ठीक है। उसके बाद में संतुष्ट है ना, कि अनिकेत अनिकेत घर भी नहीं मानते हैं बोलते हैं प्रॉपर जी, गृहस्थों के लिए विशेष करके गृहस्थ भक्तों के घर बांधना नहीं चाहिए। घर बांधना मतलब क्या है, घर से आसक्ति होना, बाद में जाके उसी घर में एक चूहा बनना या कॉकरोच बनना है ना, या घर के सामने एक पेड़ बनना है ना, ऐसा होता है। तो इसलिए भक्त घर भी नहीं बांधते है, इतना वो विरक्त रहते हैं। पापा जी यहाँ पर कहते हैं कभी कभी वो जो पेड़ के वृक्ष के वे नीचे भी रह सकते हैं, कभी कभी बड़े बड़े घर में भी रह सकते हैं, इससे कुछ उनको आकर्षित नहीं। और उसके बाद अनिकेत स्थिर मतिर, इसके पहले आया ना ये आत्मा दृढ़ निश्चय, यहाँ वो आया था ना उसके पहले, तो अपने दृढ़ता में और ज्ञान में वो स्थिर रहते हैं। और उसके बाद में प्रॉपर भी वो रिपीटेशन और वक्त, तो श्लोक क्रमांक 20, ये तो धर्मामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानात् परमा मुक्तस्ते जीवमे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर तथा अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है, ऐसे कहते हैं। तो इसके पहले के श्लोकों में, 13वें श्लोकों में भगवान ने बताया ये भक्त मेरे लिए प्रिय है, प्रिय है, प्रिय है बोला, लेकिन इस श्लोक में क्या बोलते हैं, अतीव में प्रिय, बहुत ही प्रिय है, बहुत अत्यधिक प्रिय है, ऐसे कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पहले जो भी गुण है जिनका, जिस भक्त का गुणों को जो वर्णन किए है वो सिर्फ प्रिय है और ये भक्त प्रिय है, ऐसा नहीं है। वही भक्त अभी और उत्साह से बोल रहे हैं भगवान कि ये भक्त मुझे और भी प्रिय है, ऐसे भक्त ये जो ये सद्गुण है। तो यथोक्तम, जो भी भक्ति मार्ग में लग जाते हैं इस भक्ति के अमर पथ, धर्मामृतम इदम, ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, तो चरम लक्ष्य बनाकर अनुसरण करते हैं यथोक्त उपास, श्रद्धावान मत परमा, मुझे ही चरम लक्ष्य बनकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण जो भक्ति में सकल संलग्न रहते हैं वो बहुत ही प्रिय है, ऐसे कहते हैं। तो इसके तात्पर्य पढ़िए
इस अध्याय में दूसरे श्लोक में अंतिम श्लोक का, और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को भी स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने प्रश्न उठाया था कि जो निराकार धर्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति भी संदेश सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय किया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, इससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है, तब वह उससे श्रद्धा आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है।
वो ये श्लोक है ना, क्या श्लोक है बताइए, सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवंती रत्कर्ण रसायनकता तजोशनादपवर्गवर्मणि श्रद्धा व्रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो कपिल देव ने वो देवती माता को बताया था। और
कीर्तन करता है और भक्ति के रीति रिवाजों का पालन करने लगता है, इस तरह में भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा नाकर हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मलता पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ये तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे विष्णु भावना व्रत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद्गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती
है। तो बीच के 6 अध्याय अभी खत्म हो गए है ना, इसके ऊपर प्रभुपाद जी टीका कर रहे हैं अंत में यहाँ पर का वर्णन हुआ है वो अत्यंत हृदय ग्राही है, किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तु की चिंता नहीं करनी होती है क्योंकि भगवत कृपा से वो सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। क्या श्लोक है वो बताइए। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जन परियुपासते तेषां नित्ययोगयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो प्रभुपाद जी भागवत में वर्णन करते हैं गृहस्थ भक्तों के लिए, भक्त गृहस्थ भक्त भी ये अपने जीवनी निर्वाह करने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो दृढ़तापूर्वक वो भी प्रचार कार्य में लग जाना चाहिए। ऐसे वो 7वें स्कंध में जब गृहस्थों का वर्णन होता है उनको ले भी उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, सिर्फ वो लगे रहना चाहिए भगवान की सेवा। ऐसा नहीं कि भगवान हमें प्रदान करेंगे करके सो जाएंगे दिन भर, वो नहीं, भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, ठीक है, तब सब कुछ हो जाता है। और कुछ प्रश्न टीका टिप्पणी पहले प्रभु जी का
उसने बताया था कि लास्ट वर्ग में बोलते हैं कि जो ज्ञान से अच्छा है कर्म, कर्म कर्म किया है ऐसा बताया भगवान, लेकिन अच्छा ध्यान हो गया अच्छा है कर्म फल का दिया गया था। और हम देखते हैं कि कर्म फल का त्याग तो बाद में आता है, मिला आता है ना, बाद में ज्ञान आता है,
तो वो थोड़ा कठिन चीज़ है। ये जो यू नो जो जैसे प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है वो तो उसको समझना कठिन है, इसलिए हमने क्या कर दिया सिर्फ जो तात्पर्य है, तात्पर्य में क्या बोलते हैं वो, ये जो तात्पर्य में लेकिन वो बोलते हैं कि जो ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते वो क्या है उनके लिए वर्णाश्रम है, जो नियत कर्म है ऐसे बोल दिया प्रभुपाद जी ने वहाँ पर, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसे उनके बारे में 18वें अध्याय में वर्णन आता है। थोड़ा ये जो अनुवाद जो जैसे प्रभुपाद जी ने किया है ना उसको समझना मुश्किल हो जाता है, कौन सा श्रेष्ठ है कौन सा नीचे है करके, तो इसलिए उसको हम ज़्यादा इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे बहुत कंफ्यूज हो गए सभी भक्त लोग तो इसलिए अच्छा है कि जो तात्पर्य के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। जैसे
वो पालन कर रहा है
या वो 12वें श्लोक को देखेंगे तो ऐसा हमें लगता है, लेकिन जैसे हमने कहा ना ये थोड़ा जटिल है वो समझना और तो क्लियर नहीं है, इसलिए हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया।
देखो फर्स्ट चैप्टर के अंदर
नहीं, जैसे छठे अध्याय के अंत में हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो योग के जो सीढ़ी है ना, उसको छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के तात्पर्य पढ़ेंगे तो कर्म, जब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब कर्म ज्ञान और वैराग्य में बढ़ जाता है, इंक्रीजेस इन ज्ञान एंड वैराग्य, देन इट बिकम्स ज्ञान योग. देन वेन इट इंक्रीजेस इन ध्यान मेडिटेशन, देन इट बिकम्स ध्यान योग. एंड वेन इट इंक्रीजेस इन लव एंड सर्विस एटीट्यूड, दैट बिकम्स भक्ति योग. लाइक दैट प्रभुपाद एक्सप्लेन्स दिस योगा लैडर. तो उससे लेंगे तो ये कर्म फल त्याग या कर्म करना क्या है, तो उसके नीचे होना चाहिए ज्ञान और यू नो ध्यान के नीचे. तो हमने क्या बताया, मैंने क्या बताया, जो दो मार्ग, तो ये सगुण मार्ग स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो इसको स्वीकार करो, ऐसे मैंने बताया जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसको. तो लेकिन जब हम लोग ऐसे ऐसे दे आएंगे तो वहाँ पर जो ज्ञान योग और ध्यान योग कर्म योग से ऊपर आते हैं, इन दोनों को आपको रिकंसाइल करना है, ये मुद्दा है. लेकिन एक ऐसे मार्ग है ना, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तमय, दूसरे अध्याय में बताया और इस अध्याय के तो दूसरे तीसरे चौथे श्लोक में बताया. अंत में ये लोग भी क्या है, निर्गुणवादी भी क्या है, भगवान के शरण में आना. गौ नाम जब उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी तीसरे और चौथे श्लोक के तात्पर्य में गौ नाम जन्म नाम आते, तो ये ऐसे चल रहे हैं और अंत में भगवान के शरण में आ जाते हैं. तो ये दो पॉइंट, ये एक एक चार्ट ऐसे जाता है, दूसरा कैसे आता है, सीढ़ी में जाता है. तो अच्छा है कि हम लोग इसको अलग से अलग समझे, इसका कि इन दोनों को मिश्रण करने से, विशेष करके वो 12 श्लोक लेंगे तो जटिल हो जाता है, वो क्लियर नहीं है अनुवाद. तो इसको हम लोग तात्पर्य को ज्यादा जोड़ देंगे, है ना. वो अर्जुन के लिए नहीं है और सामान्य लोगों के लिए नहीं है, और उसमें इतने सारे कठिनाई होते हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करते हैं. तो वो हमें याद रखना चाहिए. और अंत में भक्ति योग भगवान क्या करते हैं, हमें ये रिकमेंड्स, रिकमेंडिंग क्या बोलते हैं, नहीं रिकमेंडिंग, अनुमोदित करते हैं. तो और उसमें ये सब चीज़ एलिमेंट्स ऑफ कर्म ज्ञान योग सब कुछ आ जाता है उसमें. हम लोग भी शास्त्र अध्ययन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, हम लोग भी जो वर्णाश्रम को हम लोग भी स्थापित करना चाहते हैं. कर्म योग मतलब वर्णाश्रम,
हम लोग
जितना हम लोग जो वर्णाश्रम जो कर्म योग को पालन करते हैं, नियत कर्म को, उतना जितना हमें भक्ति के लिए अनुकूल कारक है उतना स्वीकार. वही मैं बता रहा हूँ, जो भक्ति के लिए अनुकूल कारक है उतना हम लोग स्वीकार करते हैं, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, है ना. तो है ना, तो जैसे वो लोग क्या है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो जो करते हैं वैसे तो नहीं करते हैं, जितना अनुकूल कारक है उतना स्वीकार करते हैं. हाँ, लेकिन इस एक समय पर उसको भी रिटायरमेंट लेना होता है ना, रिटायरमेंट लेके ज्यादा या जो हाँ वैसे वो प्रगति होता है, एक समय आ जाता है उसको, उसको क्या करना होता है, त्यागना होता है.
तो भी यहाँ एक प्रगति
नहीं, वहाँ पर जो भक्ति में कर्म त्यागना बताया गया है, हम उसकी चर्चा कर रहे थे ना, हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं.
चार चीजों में वहां पर हमेशा भगवद गीता में क्या हो रहा है, ब्रशिंग हो रहा है। एक और कर्म संन्यास है जो मायावादी शांत्या वगैरह मायावादी लोग जैन जो भी है मायावादी लोग भी और संकेट्स भी सभी लोग लेते हैं, ज्ञानी भी लेते हैं कर्म संन्यास। शंकराचार्य बताया करते थे, सो वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कोपी नवन्तः खलु भाग्यवन्तः। तो वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कोपी नवन्तः, कोपी नवन्तः मतलब कोपी ग्रहण करना या संन्यास ग्रहण करना, वो एक चीज है। और इस तरफ क्या है, कर्मवादी है, वो कर्म 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 है ना, याम इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदन्त विपश्चित, भगवान उसको भी खंडन करते, इसको भी खंडन करते हैं और इसको भी खंडन करते हैं। ना निराग्रह न चक्रिया, वहाँ पर कर्म योग कर्मवादी कर्म संन्यासियों का खंडन करते हैं। तो ये दो चीज है। और उसके बाद वर्क इन डिवोशन जो आता है ना, भक्ति युक्त कर्म जो है उसको ही हम लोग दैव वर्णाश्रम कहते हैं। वो यहाँ पर दैव वर्णाश्रम है। और जो सीधा जो भक्ति के वैदिक भक्ति में जो लगना जो इसके बारे में वो यहाँ पर आता है। तो अभी भगवद्गीता में इन चारों चीजों का क्या हो रहा है, ब्रशिंग हो रहा है। भगवान क्या चाहते हैं, इसको भी मत करो, इसको भी मत करो, और ये स्वीकार कर लो, और धीरे धीरे वैदिक साधना भक्ति के स्तर पर आ जाओ। वो भगवान का हमारे लिए अनुरोध मतलब या क्या अनुमोदन है, रिकमेंडेशन। इसलिए कृपा जी क्या बोलते हैं, इसको ही कृष्ण कॉन्शियस, इसको भी कृष्ण कॉन्शियस बोलते हैं, क्योंकि तो और अलग अलग शब्दों को उपयोग किया जाता है। तो देखना चाहिए किसके बारे में कह रहे, इसके 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 इसके बारे में कह रहे। तो जब उसको नहीं समझ देता है तो बहुत कंफ्यूज होता है।
अगर आप मुक्ति भी हो गए
ठीक है, जैसे हमारे उसके लिए आधुनिक जमाने में आप क्षत्रिय के लिए कौन उदाहरण है, भक्ति मोटा, वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे। वास्तव में देखेंगे आप उनके लीलाओं में पढ़ेंगे तो विषक्षेन को उन्होंने दंड दिया, और वो जब नॉर्थ इंडिया में गए वहाँ पर भी कुछ जाट लोग क्या है जो जो तीर्थ यात्रियों को बहुत तंग कर किया करते थे उनको भी उन्होंने दंड दिया। कैसे राज्य करना चाहिए सब कुछ उन्होंने सिखाया, उनके लिए जरूरत नहीं था वो, लेकिन वो एक उदाहरण साबित कर भगवत भक्त, और उन्होंने उसको प्रीचिंग मीन्स भी
ये लोगों को थैंक यू सर क्या करना चाहिए सर चले आए उसका
जैसे अम्बरीश महाराज पूरा वो अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए थे। उदाहरण तौर पर उन्होंने राज्य किया, ये सभी आज राज ऋषि थे ना, उन्होंने उदाहरण साबित किया लगने के लिए एक राजा कैसे होना चाहिए उन्होंने स्थापित किया। तो और उसके बाद में जब समय आ गया वो छाड़ दिया उन्होंने। नहीं नहीं वो तो समय होता है ना, जब धीरे धीरे वो ऐसे भक्ति जीवन को बिताते 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 उनके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटी है तो उनको वानप्रस्थ लेके सन्यास लेना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं हर एक ब्राह्मण को सन्यास मस्ट है, जरूरी है। और जो सिर्फ ऐसे उनको अभी भी क्षत्रिय की भावना है, अभी भी भगवान को ऐसा सेवा करना चाहते हैं जो मैनेजमेंट में सेवा उनको ज़्यादा रुचि रहता है और वो अच्छी तरह से कर भी पाते हैं तो उनको वानप्रस्थ ले सकते हैं। तो और जो जो वैश्य और शूद्र है वो ऐसे ही जा सकते हैं अपने करते करते करते, उनको सब ये रिटायरमेंट वगैरह देने का जरूरत नहीं है। जो अरिस्टोक्रेटिक वैश्य होगा वैश्य लोग वो लेते हैं, जो अन्य लोग ऐसे ही वो चलते हैं। तो जैसे वो गुजरात में बढ़िया लोग होते हैं ना वो लोग, ऐसे कर सकते हैं वो हो जाए। हमें क्या है समस्या क्या, अभी जो गुणों के जो लक्षण हैं, जो चार तीन गुण हैं, उनको अच्छी तरह से अध्ययन से जब तक उसको गीता भगवद्गीता अच्छी तरह से समझ लिया ना, वो हो जाता है सब कुछ। ये वर्णाश्रम को कैसे स्थापित करना, उसमें उतना विचलित नहीं होता। ऐसे भक्तों को उनके मार्गदर्शन करना चाहिए उसके अनुसार। लेकिन अलग अलग सांख्य है, वो हमें याद रखना
चाहिए।
अंतर ये है, प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में तीन प्रकार के सांख्य का वर्णन करते हैं। एक है जो भगवान बता रहे हैं ना, जो भगवान आत्मा और शरीर के बीच में जो अंतर है उसका विश्लेषणात्मक अध्याय है। दूसरा है देहोति कपिल देव, कपिल उनके जो सांख्य दर्शन 24 तत्वों का विश्लेषण करना और उनके आधार कौन है, भगवान विष्णु है, वही मूल है, वो समझना। और दूसरा नास्तिक जो षड दर्शन में आता है, नास्तिक कपिल, उसका सांख्य दर्शन वो आत्मा को और भगवान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो नास्तिक है। सिर्फ 24 तत्व ही अंत है और वो आरंभ में ये तत्व में रूप में रहता है भौतिक प्रकृति, फिर क्या हुआ श्लोक दूसरा अध्याय 28वां श्लोक, मध्य तिष्ठाणि भारत निधनान्येव तत्र का परिदेवन क्या होता। एनीवे तो अंत में वो सभी अणु के रूप में रह जाता, सभी भौतिक तत्व ऐसे, क्योंकि वो और वैशेषिक अणु वैभाषिक दोनों सिस्टर फिलोसफीज तो ऐसे कहते हैं। अभी प्रभुपाद जी बोलते हैं हालांकि दोनों अलग है, जो भगवान कृष्ण बताए वो सांख्य और कपिल मुनि का, लेकिन अंत में वो एक ही है, क्योंकि विशेष करके भक्ति योग और वो सांख्य योग एक ही है। अंतर वो चौथे अध्याय के आरंभ, पांचवें अध्याय के आरंभ में वो एक और श्लोक आता है ना, सांख्य योगो पृथक बाला प्रविदंत अभिपर्शित, हाँ ऐसे वो कहते हैं पांचवें अध्याय के चौथा श्लोक। योग मतलब भक्ति योग और सांख्य योग, तो बाला जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो लोग उसको अलग मानते हैं, लेकिन अंतर इतना ही है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते तात्पर्य में कि कोई व्यक्ति वो जड़ को ढूंढ के पानी, जड़ को ढूंढ रहा है, वृक्ष है उसके जड़ को ढूंढ के पानी डालने वाले अंत में, लेकिन भक्त लोग ये सांख्य योग है, अंत में पानी डालना ही है। और सांख्य भक्ति योग क्या है, क्योंकि वृक्ष है इसलिए जड़ होगा ही होगा, इसलिए पानी डाल दो सीधा। वो लोग सांख्य लोग क्या करते हैं, उसको अध्ययन करके भौतिक तत्व को उसके आधार कौन है वो सब ढूंढ के क्या करते हैं, वो पानी डालते हैं। ये दोनों भक्ति योग और सांख्य योग है। तो हम लोग जो भगवान कृष्ण और सांख्य योग बता रहे हैं और कपिल योग बना रहे, एक दृष्टि से वो एक ही है। क्यों एक ही है, शरीर और आत्मा के बीच में अंतर, और शरीर क्या है, वो शरीर तो 24 तत्व से बना है ना, जो सातवें अध्याय के आरंभ में क्या वर्णन करते हैं भगवान, सातवें अध्याय के आरंभ में क्या वर्णन करते हैं वो, भूमि रपो नलो वायु कम मनो बुद्धि रेव अहंकार, ये आठ तत्वों का वर्णन, आठ तत्वों कैसे 24 तत्व में प्रकट होते वो प्रभुपाद तात्पर्य में उसमें वर्णन करते, इसलिए वहाँ पर सातवें अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक में आत्मा और शरीर का वर्णन। तो वो शरीर क्या है, वो 24 तत्वों से बना, वो तात्पर्य में हम लोगों ने समझा। तो उस दृष्टिकोण से जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं और दोनों एक ही है, लेकिन अंतर इसलिए इतना है, भगवान प्रभुपाद जी दोनों बताया, दोनों में अंतर भी नहीं है और अंतर भी है ऐसे बोलते हैं। वो संन्यास लेते हैं वो लोग, या ज्ञान अनुशीलन करने के लिए भी वो संन्यास लेते हैं, उसके लिए समय चाहिए। आप नियत कर्म में लगेंगे, परिवार में लगेंगे, ये सभी यज्ञ करना वो सब करना करने में लगेंगे, तो ध्यान अनुशीलन करने के लिए कहाँ समय रहेगा?
जैसे आपने बताया कि मायावादी लोग हैं वो भी सब नियत कर्म क्या कहते हैं पूरा ऐसा है, और हम देखते हैं मायावादी लोग भी कुछ नियम जोड़ते हैं वर्णाश्रम के, वो पालन करते हैं, ये स्नान करना ऐसे सब नियम पालन करते हैं, वो तो पूरा कर्म कहते हैं, जैन पूरा त्याग करते हैं, मायावादी सुनने लोग भी त्याग करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ जप करना और तपस्या करना ऐसा कुछ है ऐसा, वो कुछ तो नियम फॉलो करते हैं वर्णाश्रम के ऐसा
या वो ठीक है, क्योंकि सभी हम लोग ऐसे बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उनको कर्म संन्यासी बताएगा तो, और लेकिन कुछ करते हैं वो थ्रेड नहीं रखते हैं ब्राह्मण का और जो भी होता है ना, और शिका भी काट देते हैं, ये सब लक्षण है कर्म संन्यास का।
उन लोगों का ऐसा अंडरस्टैंडिंग है ऐसा कर्म संन्यास नहीं कब दे सकते, जब आपको कर्म जिज्ञासा हो तब कर्म संन्यास दे सकते, वरना ऐसे कर्म संन्यास देते भी नहीं,
क्योंकि वो उपनिषद से वो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू होता है, उसके पहले नियत कर्म सभी वेदों में बताए गए हैं,
इसलिए वो लोग भी बोलते हैं नियत कर्म करो, नियत कर्म करने से आपको ब्रह्म जिज्ञासा होगा।
हाँ, सामान्य लोगों के लिए वही रेकमेंड किया उन्होंने, हाँ जो शंकराचार्य ने सामान्य लोगों के लिए नियत कर्म करने के लिए बोले, लेकिन जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो संन्यास लें,
ब्रह्म लोग ही ले सकते हैं, नॉट कि वो नियत कर्म करेंगे तो उसके अगले जन्म में भ्रमण करेंगे, ऐसा उनका फिलोसफी है।
वो सब ठीक है, वो शास्त्र में है, वो वेदों का वही फिलोसफी है, वो सही है, और लेकिन वो किसके लिए लागू नहीं होता है, गृहस्थों के लिए उनका दर्शन कोई लागू नहीं होता, वो पालन ही नहीं कर पाएंगे, वो लोग जो बताते हैं मायावादी लोग वो कोई गृहस्थ पालन नहीं कर सकते उसके,
आपने बताया ना कि इसलिए वो बोलते हैं कि भक्ति जो है वो कम बुद्धि वालों के लिए, जो गृहस्थ में भी भक्ति करो ज्ञान आपको आएगा, बुद्धि कैसा होगा तो ज्ञान आएगा
सब या, लेकिन आप लक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे तो भक्ति बहुत कठिन हो जाता है, क्यों? निराकार को समझना आसान है, लेकिन भगवान का सकार दिव्य स्वरूप है वो समझना बहुत मुश्किल होगा, है ना? आप नकार देंगे, यहाँ पर बहुत ही जगत में नाम रूप गुण लीलाएं हैं, आध्यात्म मतलब ब्रह्म मतलब उसमें कुछ नाम रूप गुण लीला वो आसान है, समझ नकारते नीति नीति का जो वो आसान है, लेकिन वहाँ पर दिव्य नाम रूप गुण लीलाएं हैं वहाँ पर है वो समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए भक्ति उतना आसान नहीं है। लेकिन वो सही भक्ति नहीं है, भक्ति का अर्थ है नित्य युक्त उपासना, नित्य युक्त से योगी नाम बार बार भगवान बोलते, ऐसा नहीं कि आप एक बार निष्कर्म को प्राप्त किया तो तब जरूरत नहीं है, वैसे कहाँ पर बताएगा, हमेशा नित्य युक्त उपासते होते, नित्य 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 अभियुक्त आना,
तीन चीजें वो कंफ्यूज कर दिया करते हैं, लास्ट चैप्टर में भी आएगा फर्क क्या कहते हैं, भगवान अर्जुन बोले यज्ञ ध्यान कर्म से क्या क्या नहीं चाहिए ऐसा बोल रहे, तो उससे पहले भगवान ने सब खंडन कर दिया, ये सब ये क्या समझते हैं कि यानी कि जो उनका जो पर्पज था वो खंडन कर दिया, जो जिसके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं जिसमें ध्यान दे रहे हैं जिसके लिए वो सब कर रहे हैं, स्वर्ग में जाना या सब ये करना, और एक तरह से भगवान बोलते हैं कुछ कभी जगह नहीं करना ही है, वो
एक्चुअली कृष्ण भक्ति में वो सब बहुत स्वाभाविक हो जाता है, ये सब चीज़ स्वाभाविक हो जाता है, सन्यासी लोग भी ये सब करते रहते हैं, सुबह उठना जो भी हमारे जो कृष्ण भावनामृत के अनुसार यज्ञ दान तप कर्म है ना,
तो भक्त लोग करना है भक्त लोगों के लिए, तो जो भक्त लोग हैं वो क्या जैसे
कलयुग के लिए वो हम लोग सिर्फ संकीर्तन यज्ञ करेंगे ना, यज्ञ मतलब सिर्फ अग्नि में नहीं है, पंच महाभूत के मतलब पंच महापाप के लिए है ना,
जैसे आपके ऊपर देवता करुण है, तो आप जब यहूदी रहते हैं यही थी, तो जब तक उनको खत्म हो जाएगा अतिथि को खिलाने से वो जो बता देव से बुढ़ा बुढ़ा फिर बुढ़ा वो अलग अलग होम बता वो सब उन चीजें खत्म होता है, तो उसको कभी क्या क्या नहीं है वो करता है वो जैसे कर्म करने की प्रदर्शन करें उसका ये ऐसा है। मगर हमारा तत्व ज्ञान ऐसा है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो भगवान के शरण में रहता है उसको और करने की जरूरत
नहीं नहीं उसको भक्ति में कर सकते हैं ना, जन्म पर जन्म नहीं देते क्या गृहस्थ लोग है कि नहीं, गृहस्थ जन्म देते हैं। और क्योंकि भगवान को सेवा करने से यहाँ पर एक तात्पर्य में आता है ना, देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे कल्पना लेते हैं। और क्या बताया आपने, हाँ श्राद्ध, तो उससे भक्ति में लगने के कारण ही क्या हो जाते हैं लोगों को भी, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं जो पितरगण भी। तो भक्ति में चीज वो परिपूर्ण है, उसमें कोई दोष नहीं देख सकते भक्ति में। सिर्फ इतना ही है कि हम लोगों ने ऐसे भक्ति का जो संस्कृति है वर्णाश्रम धर्म उसको ना होने के कारण ऐसा कोई दोष देख सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, भक्ति परिपूर्ण है।
देवी वर्णाश्रम का जो मॉडल था वो पहले हिंदी में भी था ऐसा मॉडल, देवी वर्णाश्रम जो था
परीक्षित महाराज का परीक्षित महाराज और क्या है राम राज प्रभुपाद जी 8वें स्कंध में आप पढ़ेंगे ना 9वें स्कंध में जब राम राज का वर्णन हुआ, अभी भी वर्णाश्रम को हम लोग स्थापित करेंगे तो अभी भी हम राम राज का स्थापना करेंगे। भागवत में तो ऐसे आपको नहीं मिलेगा, शायद आपको महाभारत में मिलेगा, क्योंकि महाभारत में धर्म अर्थ काम का होता है ना, जैसे महाभारत के युद्ध करने से पहले अर्जुन ने भी कुछ देवी देवता का पूजा किया ऐसा वो मिलेगा। इसलिए हमारा जोर हमेशा हम धर्मशास्त्र पढ़ना वगैरह ज़्यादा उतना नहीं जाना चाहिए, हम लोगों को सिर्फ भगवद्गीता भागवत पढ़ना चाहिए, उसके आधार पर ही हमें क्या करना चाहिए समाज को स्थापित करना चाहिए, वो दैवी वर्णाश्रम।
जैसे भागवत में क्या था, प्रथम महाराज सूर्य की पूजा करते थे, प्रथम महाराज जो है सूर्य की आराधना करते थे, फिर वो ब्राह्मण की सेवा करते थे, ऐसा
वो सब चीज क्या है जो भक्ति के लिए अनुकूल कारक चीज है वो है। वैसे देखेंगे तो जो गोपियां भी क्या किया, फतेहानी का सेवक है जो भक्ति के लिए अनुकूल कारक है वो, लेकिन वैसे जो जो वर्णाश्रम समाज में जो देवी देवताओं का पूजा होता है और ये देवी खतयानी का देवी का पूजा अलग है, पूरी तरह से अलग है, भागवत बहुत ही अलग है।
भागवत में भी आता है जब भगवान का खाने का समय आ गया था, पूरा राज्य के अंदर जब पूरा शोक ऐसा हो गया, पूरा लक्षण सब अलग अलग आने लगे, तो उसमें उस समय भी देवी देवता का पूजा तो होता ही था, क्योंकि इसमें पता है देवी साथ ड्राई
ठीक है वो होंगे तो भी ठीक है, लेकिन जैसे देवी देवताओं का ना वैदिक समाज में होता वैसे नहीं होता, हमारे जोर तो हमेशा भगवान कृष्ण ही केंद्र रहेंगे। भागवत भागवत पूरा भागवत हम लोगों को महाभारत वगैरह उसमें भी ज्यादा बोलना है, जो भी जरूरी है वो ले सकते हैं। ऐसे
पहले जो वर्णाश्रम फॉलो कर रहे थे उसमें कई लोग ऐसे थे जो डायरेक्ट प्रोसेस में था, इसीलिए वो देवी देवता, अभी तो डायरेक्ट प्रोसेस है देवी वर्णाश्रम को अनुकूल प्रतिकूल,
ये बहुत ही महान है। और धर्मशास्त्र भगवद्गीता भी धर्मशास्त्र है, तो इसमें भी धर्म कैसे पालन करना चाहिए वर्णाश्रम का सभी दिया गया है, गीता भागवत के आधार पर ही हम लोगों को नहीं, गीता भागवत में सब कुछ है, उसके जो अंश है मनु संहिता वगैरह उनको हम लोग नहीं नकारेंगे, वो सब गीता भागवत में है। और जो गीता भागवत में संबंधित जो चीज़ है हमारे आचार्यों ने अपने टीकाओं में वो उन शास्त्रों से उल्लेख करके दिया उतना काफ़ी है, और उसमें ज़्यादा गहराई में जाने
की जरूरत नहीं। मैं कपड़े देखा गया था, मुझे बता रहे थे वो आई थिंक मदर चल रहे थे वो बताते हैं कि वहाँ उन लोगों की भ्रमण के भ्रमण का जो नियत क्रम होता है बहुत जटिल होता है। सुबह उठना है, खड़ा होना है, उसमें सब प्रकार का नियम पालन करना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे बाल कटना है, पूरा
He is not from Brahmin family. He is from Vaishya family. Shetty, you know. But he was born in that area. He knows so much.
But he said that all these rules are developed for everyone. कैसे उठना है, लगन कैसे करना है, सो जाना कैसा है, कैसे कपड़ा पहनना, हर चीज के एक रूल था ऐसा। वो रूल सब लोग फॉलो करते रहते हैं।
या उन सभी शास्त्रों से हमारे आचार्यों ने लेके हमें प्रस्तुत किया है, हरिभक्ति विलास, संस्कार दीपिका, सब ये ना सत्क्रिया सार दीपिका, या गीता भागवत भी काफ़ी है, बहुत है इसमें। अब तात्पर्य में आचार्यों ने वो ग्रंथों से भी उल्लेख किया है सभी, इतना हम लोग समझ लिया ना, बहुत काफ़ी है। जो गीता भागवत में जो भी दिया है वो सब पालन करता है, बस गीता भागवत हमारा आधार, गीता भागवत।
आचार्य ऐसे कहेंगे जो गीता है वो निर्णय शास्त्र बाकी सभी का निर्णय इसमें
या इसमें कोई सोच के ऐसा सोच के यहाँ पर नहीं है मैं बाहर जाऊँगा तो विचलित, बहुत कुछ है इन दोनों में ना। और विशेष करके आपको और अच्छा गहराई में चाहिए तो आप आचार्यों के टीका से समझ लिया ना, बहुत है ये जीवन के लिए काफ़ी है। बस प्रभुपाद जी भी क्या करते थे ना, मेरे ग्रंथों में सब कुछ है। तो हम लोग दूसरे दूसरे धर्म ग्रंथ, वो ग्रंथ, ये ग्रंथ पढ़ने के लिए जम करते रहते हैं, हमारे पास जो है वो समझते नहीं, बहुत है इसमें।